ये बजा लगा ना
बर्तन है था करके फट गया
नहीं है माने
है
आज
अच्छा
भी है
अच्छा तुम्बा ना
नहीं नहीं वैसे मैंने कहा
तुम्बा ये वाला नहीं ये नहीं
बर्तन भी है
भी कटल है
हाँ जी आप ऊपर टैग दो
नहीं नहीं हो जाएगा
तो कीर्तनिया हो सब रखे होंगे सब इंस्ट्रूमेंट तो सब रखे होंगे ना
इंटरेस्ट है बस
अच्छा बोलने में नहीं
ज्यादा मेहनत नहीं करते
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य जय घोर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Yeah.
परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। नित्यरा प्रविष्ट जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। Particular something you want to discuss? Or? जड़ भरती क्या है?
अगर आपको लगता है
कि नहीं, हम आपके लिए आए हैं, आपको लगेगा नहीं। हरे कृष्ण। तो आज राघव जी के घर में पधारे हुए सब भक्तगण मातृगण, तो आज के मध्याह्न सत्संग कार्यक्रम जो राघव जी ने आयोजन किए हैं, तो मैं आप लोग स्वीकृत हुए, इसलिए मैं इस्कन की तरफ से सभी को स्वागत करता हूँ। तो राघव जी का एक आदेश है कि उन्हें जड़ भरत के बारे में जानना चाहते हैं। जड़ भरत की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत पंचम स्कंद में आता है। भरत के नाम है भरत महाराज से, जिससे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो इतने महान आदमी थे महाराज भरत, जिन्होंने साक्षात भगवान के अवतार ऋषभदेव का पुत्र थे, प्रथम पुत्र थे, बड़े पुत्र भगवान ऋषभदेव के 100 लड़के थे। 100 लड़के में से नंबर वन प्रथम पुत्र थे भरत महाराज भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इतने श्रेष्ठ व्यक्ति थे, और भगवान ऋषभदेव जब ही उपदेश देते थे साक्षात भगवत अवतार थे। उन्होंने अपने सारे पुत्रों को बुलाकर कहते थे, उपदेश दिए, बोले देखो मैं तो चला जाऊंगा, उसके बाद में अगर आपको किसी प्रकार का कोई शंका हो, किसी प्रकार के कोई जानने का जिज्ञासा हो, तो आप मेरे से ये प्रतिनिधि बिल्कुल योग्य है, बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं, उसी से परामर्श करो। किससे? भरत से। मेरा बड़ा लड़का है, मेरे ही जैसा है। भगवान ऋषभदेव स्वयं सभी के सामने खुली सभा में ऐलान किए थे। इतना नहीं, भरत जी के छोटे भाई 9 नवजोगेश्वर हुए हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं। भरत महाराज के छोटे भाई नवजोगेश्वर हैं, जिनका नवजोगेश्वर संवाद आता है एकादश स्कंध में, उन्हीं के छोटे भाई हैं। तो इतने महान व्यक्तित्व थे। तो भगवान ऋषभदेव जब चले गए राज्य त्याग करके विरक्ति, तो उनको दे गए राज्यभार। चक्रवर्ती राजा थे, और राजा होने के नाते गृहस्थ आश्रम में थे ही, लेकिन पिताजी चले जाने के बाद राजपाट चला रहे थे, उन्होंने राज्य चला रहे थे राजा के नाते, लेकिन उनका मन नहीं लगा। ये कहा गया कि उन्होंने भाव स्तर में पहुंच चुके थे। भक्ति में 8 सोपान होता है, अंतिम स्तर होता है प्रेम, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक। तो उन्होंने लगभग प्रेम के स्तर में पहुंचे, तो भाव के बाद प्रेम आता है, उसी स्तर में आ चुके थे। इस स्थिति में आकर तो उनका मन घर में, परिवार में, राज्य में, राज सुख में, समृद्धि में, भोग में, किसी में नहीं लगा। इतने अनासक्त भाव विरक्त उनका मंदिर में आया, तो उन्हें युवक अवस्था में ऐसा नहीं कि परिणत अवस्था आ गया था, क्योंकि पिताजी राज्य देकर गए थे, कुछ ही दिन राज्य किए थे उन्होंने, 2-4 साल किए होंगे। तो युवक अवस्था में उन्होंने, युवावस्था में ये राज्य लक्ष्मी धन संपद इतने सुख परिवार सब कुछ छोड़ करके कैसा छोड़े, भागवत में उनका शब्द आया है मलवत, ये शब्द भागवत में लिखा गया है, मलवत त्याग दिए। मलवत माने हम तो डेली करते हैं ये क्रिया, कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार जाते हैं, कोई अटैचमेंट रहता है टॉयलेट जाने के बाद, कोई मन में कोई विचार आता है या 1-2 किलो वेट लॉस हो गया, ऐसे कोई सोचते हैं ना, बोलते हो शांति है ना, नहीं तो ऐसे ही त्याग दिए मलबत, त्याग देकर बिल्कुल लिखने आ गए छोड़ के जंगल में। जंगल में आकर के एकांत भजन कर रहे थे भगवान को, बोले नहीं सो बाधा है, क्योंकि उसी स्तर में आ चुके थे, उन्होंने भजन कर रहे थे और भगवान के विग्रह निर्माण करके उनको त्रिसंध्या करते थे, उनको उपास पूजा करते थे, वन से जंगल से फूल फल ला करके उनको पूजा आदि करते थे और उसी में फल फूल लेते थे और भजन करते थे एकांत भजन। तो जंगल में इस प्रकार उन्होंने उनका भजन चलता था निष्ठा से। एक दिन उन्होंने सुबह उठ करके अपने उपासित विग्रह के लिए पुष्प चयन में गए थे, फूल तोड़ के लाएंगे, माला बना करके पहनाएंगे ठाकुर जी को। तो फूल तोड़ने के लिए एक फूल का डलिया साथ में लेकर के जंगल में कहीं फूल के, जहाँ फूल मिलेगा यहाँ कहीं घाटी में गए थे, इस जगह पर गए थे जहाँ की झरना एक नाला के रूप में बहता था, दोनों तरफ सुंदर सुंदर झाड़ियाँ थी, खुले घास का मैदान था, कुछ फूल के पेड़ भी थे, तो जाकर के फूल तोड़ते थे उन्होंने। तो सुबह के समय था, मतलब सूर्य उदय हो चुका था, तो फूल तोड़ रहे थे, तो पास में देखे थोड़ी दूर में एक बहुत बड़े सुंदर घास की बगीचा है, घास के लॉन है, जिसमें एक बहुत बड़ा झुंड हिरण के वो घास चल रहे थे। बहुत सुंदर निर्जन वन प्रदेश में ऐसा होता है, आजकल की बात नहीं तो कई 1000 साल पुरानी बात है, उसी जमाने में तो भरे रहते थे वन्य जंतु जंगल में, आजकल तो जंगल में कुछ नहीं मिलते, चिड़ियाखाना में देखने मिलेगा, नहीं तो टीवी में देखेंगे फोटो में, हिरण फिरन देखने नहीं मिलते कहीं। तो पूरे झुंड के झुंड हिरण घास चर रहे थे, उन्हीं के पास में उन्होंने फूल चुन रहे थे। तो इतने में हुआ क्या कि एक शेर जंगल से का आवाज किया, शेर का दहाड़ सुने तो हिरण डर गए, सबका कान खड़े हो गए। तो दूसरा बार जब शेर आवाज किया सब भागे, हिरण एक बार वो दौड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, भाग चले गए। तो उन हिरण के झुंड में से एक हिरणी थी तो जो गर्भवती थी, वो दौड़ नहीं पाती थी, वो धीरे धीरे जाती थी। अब सब तक गए, नाला था, छलांग फटाफट लगा करके नाला के उस तरफ जा करके चले गए दौड़ के। वो बेचारी जैसे तैसे तो नाला तक गई, अब इतना बड़ा नाला तो जंप नहीं कर सकती, भारी पेट है उसका, तो क्या करेगी, वहीं खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद तीसरी बार शेर का दहाड़ा आवाज सुनाई पड़ा, तो इतने डर गई उन्होंने, अब प्राण भय में उन्होंने छलांग लगा ही दी, यद्यपि असमर्थ थी फिर भी छलांग लगाई। भरत जी के सामने बोल रहा था, सीन में हम देख रहे थे ना, टीवी सीरियल चल, ऐसे ही उनका सामने घटना घटित हो रहा था, शेर का आवाज सुनाई पड़ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने छलांग लगाई हिरणी ने, तो पूरी शक्ति लगा कर सामने लगा और इस पर पहुंच गई, नाला के उस तरफ गिर जाकर गिर के मर गई। और उसमें जो छलांग लगा रही थी उसी समय में उनके संतान प्रसव हुआ और वो पानी में गिर गया। भरत जी देख रहे हैं उनके सामने घटना हुआ, वो तो उस तरफ पड़ के मर गई, मर चुकी, और सद्य जन्म हुआ जो हिरण शावक वो जल में बह रहा है, अब तो मर जाएगा, पानी में बह रहा है तो कोई सद्य जात किसी को बचाएंगे नहीं, तो गया तो मरा। तो भरत जी पास में खड़े फूल के डालिया लेकर के बोले, तो कोई नहीं, अगर मैं इसको ना बचाऊं तो दोस्तों मुझे लगा मेरे सामने मर जाएगा। तो इतने में उन्होंने पानी में उतर गए, जा करके उसको हाथ से फूल कर लाकर उठा लाए, उठा के ला करके रखे, धूप तो था ही धूप के समय ऊपर ला कर रखे। आपको पता होगा हिरण है, बकरी है, गाय है, जो पक्के निरामिष प्राणी, जो केवल घास और पत्ते खाने वाले होते हैं, जो सही में घास पत्ते खाते हैं, हमेशा चरते हैं, उनका अंदर ये शक्ति होता है, उनके बच्चे आधे घंटे में उठकर दौड़ेंगे, है ना? नहीं देखे ना नहीं आप लोग, यहां तो गाय बकरी को पालते नहीं, अब किसी दिन एक्सीडेंट होगा। गाय है, बकरी है, हिरण है, उन लोग जो शाकाहारी जो केवल घास पत्ते खाते हैं ना, उनके बच्चे खड़े होने में दौड़ने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 1 आवर, 1 घंटे में। और हम लोग मीट मछली खा के जो तगड़ा बनते हैं, हमारा कितने दिन लगता है बच्चे खड़े होकर दौड़ने में? एक साल में ही कहाँ हो पाते हैं। खड़ा होना दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, किसी पकड़ पकड़ के खड़ा होंगे 2-3 साल लगेगा, दौड़ने के तो 5 साल चाहिए। ये है तो हिरण की सावक ला के रखे तो वो घंटे भर में फिट खड़ा हो जाओ, तो धूप लगा उसे। लेकिन कोई नहीं है ना, कोई हिरण का झुंड थे वो जब उनका आंख खोला, उन्होंने कोई हिरण जैसा प्राणी देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि कोई नहीं थे, पूरा झुंड था, कुछ नहीं थी। उनका मां मर गई थी, उनको तो नाला से इस तरफ उठा के ले रखे, तो पहले बार आंख खोला जो देखा, उन्होंने उनको उद्धार करता भरत जी को देखा, बोला वही शायद मेरे माँ है, वही मेरा जन्मदाता है, वही मेरा पिता, उनको मान लिया उन्होंने। वो बेचारा क्या कर, जन्म से तो जब आंख खोला उन्हीं को देखा उन्होंने, और किसी को देखा नहीं, तो उन्हीं के साथ उनका संबंध हुआ, संपर्क हुआ। तो वो गए फूल डलिया लेकर अपने कुटिया में, आश्रम गुफा में, वो उनका साथ साथ गए, उनका पीछे पीछे चलते चलते। आप जानते हैं जो छोटे छोटे हिरण के शावक इतने प्यारे होते हैं, इतने आकर्षण है ना, यहाँ तो कोई होते ही नहीं आपके देखे जाए। इसलिए सो कुत्ता के बच्चा से क्या बोलते हैं, पिल्ला, उसी को लेकर के हिरण ये सब तो होते ही नहीं, क्या करेंगे। गए तो ये थर्ड क्लास पशु सबसे पाप जो नहीं, कुत्ते के बच्चे को ला करके पालते हैं, कुत्ते बिल्ली को। तो इतने आकर्षक, इतने प्यारे होते हैं हिरण के शावक, और बड़े शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं वो लोग, क्योंकि पक्के शाकाहारी होते हैं, और बड़े उनका सात्विक प्राणी है उन्होंने हिरण। तो उनके साथ गया और जा करके फिट हो गया, जाकर फिर उनको ला कर कुछ पत्ता वगैरह ला कर खिलाए, महाराज थे उनको से पता था ज्ञान, तो लाकर कुछ खिलाने दिए तो और तृप्त हो गया। वो तो मान गया कि मेरे तो वही हैं, माता पिता दोनों वही है, उनको विश्वास है कि मैं उन्हीं से शायद पैदा हुआ हूँ, यही सोचता होगा। तो उनका साथ रहा, वो पूजा किए, प्रसाद खिलाए खाया, तो वहीं सोए उनके पास में, वो भी सोया, बस दिन रात वहीं उनका ही बल गया पार्टनर। अब कभी कभी भरत जी बैठ करके आसन लगा कर बैठ के जप करेंगे, वो जाकर उनके गोद में बैठ जाएगा। कभी कभी उनके शरीर में होता ना ऐसे घिस करके जाना आना, ऐसे जाना, इतने हुआ कि उनके साथ इतने संबंध बढ़ गया, जो भरत जी इतने बड़े अनासक्त थे, आपने स्वयं पत्नी परिवार पुत्र धन संपत्ति राज लक्ष्मी को मलबत छोड़कर आए थे, आज इस जंगल के अंदर, निर्जन जंगल के अंदर एक सामान्य हिरण शावक हिरण के बच्चा के प्रति इतने प्रेम बढ़ा, ये तो भगवत माया ही माना जाएगा। ऐसे विरक्त महापुरुष इनके साथ अटैच हुए कि अब उसको ना उनका अच्छा नहीं लगता था। अब महीने दिन के बाद तो इतने उनका संपर्क बढ़ गया कि वो 2 महीने के बाद तो चलने लगा, जंगल में दौड़ कर जाता है, दौड़ कर आता है, खूब चंचल हिरण बहुत फास्ट दौड़ते हैं, फत फास्ट चला जाता है, फिर आ जाता है, वो आवाज करते हैं, उसका नाम कुछ रखे होंगे, नाम बुलाएंगे तुरंत आ जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर आ जाए, बिजली की तरह आता था जाता, तो उसको देखे और प्रसन्न होते थे। और कभी कभी वो अगर पूजा आदि करते हैं, वो हिरण साथ में नहीं होते, मजा नहीं आता था, आज वो साथ में क्यों नहीं है। तो इतने उनका साथ संपर्क हो गया, संबंध हो गया, तो उनको नहीं देखने से उनको अच्छा नहीं लगता था, खाने पीने सोने हर समय में उनको देखना चाहते थे, कहाँ है कैसे है। धीरे 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 वो संपर्क गाढ़ होने लगा, कभी कभी तो वो चला जाता था, अभी साल भर का हो गया और अपने आप मजबूत हिरण है, वो चला जाता था, कभी वो लेट में आता था, उसके लिए उन ला के रखते थे वो पत्ता साग वगैरह, लेट में आता था घूम फिर के, तो सोचते थे क्यों इतना लेट में आ रहा है, क्या हुआ, बहुत शोक करके बैठते थे, वो आता था फिर खुश हो जाते थे। तो इसे साल एक कुछ दिन बीता और एक दिन वो हिरण गया था जंगल में, चला जाता दिन में फिर आ जाता है, गया था और हठात बारिश आया, साइक्लोन वेदर, तूफान बारिश झड़ आया, तो खूब तेजी से हवा चला, बारिश और ये होता है ना क्या बोलते हैं पत्थर ओले ओ ओ गिरने लगा, तो बड़े चिंतित हो गए, अरे मेरे हिरण कहाँ चले, उसको नाम दिए होंगे जो कहाँ चला गया, बारिश में कहीं भीगता होगा, ओले गिरते होंगे, कहाँ कोई पेड़ के नीचे खड़ा है कि क्या करते, बहुत सोचना सोच रहे थे, सोचते सोचते अब शाम हो गया, अब जंगल में तो कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं कि कोई बत्ती नहीं किसे देखें, बहुत जल्दी अंधार हो गया, अंधार हो गया तो उनका चिंता और भारी बढ़ने लगा जोर से, अब क्या करूं क्या करूं, बहुत चिंतित होने लगे, और करेंगे क्या, बारिश सुन नहीं रहा है, हवा थोड़ा कम होने लगा लेकिन बारिश बढ़ गया तेजी से, वो बाहर में जाने से तो उनके पास छतरी फतरी थोड़ी था, कुछ नहीं था, अब अगर रहते आवाज़ दे रहे थे बीच बीच में वो तो हिरण तो नहीं आ रहा था, तो रात लेट हो गया, घोर अंधकार, बारिश छूट गया लेकिन पूरा जंगल में पानी पानी भरा हुआ है, कीचड़ पानी, और उसमें उनको नींद नहीं आया, रात बहुत उपाय के चिल्लाए आवाज़ की नहीं आया, तो उठ करके चले ढूंढने के लिए, कुछ तो है नहीं, बत्ती टर्स है नहीं, एक लकड़ी में आग जलाए हुए गए होंगे, वो तो कहीं बुझ गया होगा पानी के टपक में, थोड़ी अंधकार में बेचारे चलते हैं, वो वृद्ध हो चुके हैं, वो हिरन बिल्कुल यंग था, वो बूढ़े हो चुके थे, जंगल के रास्ते में चलते थे को दिखाई तो नहीं पड़ता था, इसे अंधकार है और पानी में तो वो भी नहीं पता चला कोई पत्थर है कि गड्ढा है, कहीं गड्ढा में फंसे लगे बिल्कुल चोट लगा, गिर पड़े पानी में, वहीं मर गए, उनका प्राण गया, उसको बुलाते बुलाते रोते रहते हिरण को चिल्ला रहे थे तू किधर है कहाँ है कहाँ है करके जा रहे थे, स्वयं का पैर फिसला गिरे वो मर गए, और हिरण को बुलाते बुलाते मर गए उन्होंने, अपने प्राण छूट गया। तो भगवान ने एक सूत्र बताए गीता में, अंत काले चमामे व स्मरण मुक्त्वा कले वरं, जो अंत समय में जिस भाव को आप ग्रहण करेंगे तदभाव भावित, तो इसी भाव में आ जाए, जो दशा होगा अंत में वही दशा प्राप्त होंगे, हिरण को याद कर रहे थे तो हिरण जोनी में चले गए। इतने बड़े महर्षि भरत, इतने बड़े त्यागी भगवान के पुत्र, अब उनका दशा ये हुआ, जंगल में जाकर के भजन एकांत में सब त्याग करके चले गए थे, यहां उनको आसक्त हो गया कि पशु के साथ, और आसक्ति के इतने गाढ़ हुआ कि मृत्यु के समय याद करके मरे तो पतन हो गया। यहां एक शिक्षा मिलता है, भगवान ने गीता में सिद्धांत दिए अष्टम अध्याय में है ना, जम जम वापी स्मरण भावं त्यजंती अंते कड़मरम सदा तद्भाव भावित, कड़ेबर अंत समय में जो भाव आप ऊपर बढ़ सकते हैं, तो अंत समय में जो सोच विचार आएगा जो भाव आएगा वही भाव को अवश्य प्राप्त करेंगे, तो उसका भगवान को कहे नहीं उसका प्रमाण, महाराज भरत इतने विरक्त महापुरुष, इतने उच्च कोटि के महात्मा थे, लेकिन मरते समय हिरण को ढूंढ रहे थे, आवाज दे रहे तो हिरण ही बन गए, तो केवल उन्हीं के लिए हुआ और किसी के लिए नहीं होगा, ऐसे नहीं, ये सर्वसाधारण कानून है, नियम है, हम सभी भी इसी रूल में आते हैं, इसी जनरल रूल फॉर एवरीबडी, अगर हम अंत समय में किसी के प्रति आसक्त रहे, किसी के बारे में सोचे तो हम वही बनेंगे, वो निश्चित है, उसी दशा प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हमारा जो वैदिक प्रणाली है, मनुष्य के लिए कहा गया कि प्रथम ब्रह्मचर्य रहें, फिर गृहस्थ आश्रम रहें, फिर परिणत अवस्था में डिटैच हो जाए, वनप्रस्थ वन गमन करे, वन नहीं तो वन जैसा परिवेश में रहे, मेरे घर द्वार मैनेजमेंट ये सब परिचालना से बिल्कुल हट करके केवल भजन के हिसाब से रहें, सिंपल लिविंग करके जितना आवश्यक इतने से और कम लेकर के रहे, तप करके, और वो कदम तप करने वाले तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अंत में संन्यास लेकर बिल्कुल, फिर मरने के लिए फुल्ली प्रिपेयर करें, किसी के प्रति आसक्ति ना रखें, बाय चांस किसी के प्रति आसक्त हो गया तो गया, फिर तो वही बने। इसलिए प्रभुपाद जी ने कई बार ये कहते थे, भजन करो साधन करो मरते जान ले होए, है ना, सुना नहीं बात कि जितने भजन साधन ये सब करते हैं इसका रिजल्ट तब पता चलेगा कि किसी मरा तूने, मरते जान ले होए, अंते नारायण स्मृति ना हुआ सब क्या हो जाए। तो भरत महाराज का ये पतन हुआ, राजर्षि भरत आज बन गए हिरण आसक्ति की वजह से। कितने बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे लेकिन ये नहीं कह सकते मैं इतने भारी भोगा तो मैं निश्चित भगवत धाम चला जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं। माया इतने प्रभावशाली इतने प्रबल है, साक्षात भगवान के बड़े पुत्र जिसके छोटे भाई नवजोगेश्वर हैं वो भी उनसे सुनते थे सीखते थे। इतने बड़े विद्वान पुरुष राजर्षि भरत महात्यागी जंगल में भजन करने के लिए चले गए थे लेकिन यहां भी निर्जन जंगल में एकांत में, हम बोलते हैं सिटी में बहुत माया है, जंगल में तभी जवान जंगल में कौन सा माया था। आज से कई हजारों साल पहले के बात में कह रहा हूं, पुलस्त आश्रम में गए थे उन्होंने, पुलस्त आश्रम का जानते हैं, अब नेपाल में जो काठमांडू गंडकी नदी काकबणी के आगे है वहीं पर घटना हुआ था। इस स्थान तो नितांत शांत निर्जन वन प्रदेश था, कोई मनुष्य कोई शोर शराबा कुछ नहीं था, लेकिन माया का पराक्रम इतने प्रभावशाली, एक सामान्य पशु एक हिरण शावक के भी इन महावैरागी महात्मा का संपर्क हो गया, प्रेम हो गया और उसके कारण उनका पतन हो गया, जंगल में पतन हो गया। हम बोलते नहीं हम जोड़ करके यहां चले जाएंगे, ये हमारा है यहां बच जाएंगे, कहीं नहीं बच पाएंगे, नहीं बच, बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर इस भगवान की तथा माने महाप्रभावशालिनी गुणमयी बहुत पावरफुल माया से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय भगवान कहते हैं, क्या, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, मेरे शरण में आओ तो मेरी माया तुझे छोड़ देगी नहीं तो नहीं। वो आपके उदाहरण ठीक से समझ सकते हैं, जैसे कभी कभी आप तो अमृतसर में बाकी पंकज जगह सब करते होंगे, मंदिर बनाते ना डोनेशन लेके लिए जाना पड़ता है हमेशा, अभी तो यही ध्यान रहता है, सुबह उठ करके वही सोचते हैं उनका घर में कल छोड़ गए, कल बोला था शायद कुछ मिलेगा, हरे कृष्णा आज उनका पास चलते हैं तो वही चलता है भजन तो जाते हैं। लेकिन पहले जमाने में भारतवर्ष में ऐसे सब सेठ साहूकार लोग जो भी वणिक लोग होते थे अपने द्वार पर बड़े गेट बनाते थे तो उसमें स्वस्तिक चिन्ह करते थे, शुभ लाभ लिखते थे और स्वागतम फलक लगते थे, है ना, पहले जमाना ही होता था, सुस्वागतम कोई भी आए सुबह स्वागत होते थे, अतिथि अभ्याकत ऋषि मुनि भिखारी सबको स्वागत करते थे, जानते थे गृहस्थ धर्म दान रखना है सबको देना है, इसे स्वागत फलक लगाते थे। आजकल हम एडवांस कर गए ना, बहुत पढ़े लिखे आधुनिक बन गए, बहुत शिक्षित हो गए, तो अब ये सब छोड़ दिए, स्वस्तिक सुख चिन्ह स्वागत फलक हटा दिए, अब एक नया फलक लगाते हैं, क्या, बी अवर ऑफ डॉग, कुत्ते के प्रति सावधान, कोई आ ना पावे, बाय चांस कोई साधु संत आ जाए कुत्ते है होशियार मत आओ, ये धमकी देते हैं गेट को पर ये लगा कर लगा देते हैं गेट में। लेकिन इस्कन वाले तो आधुनिक संत है ना, वो घुस जाते हैं अरे तू जितने काट करता है हम भी ऐसे ही हैं आप कोई बड़े आदमी है और बड़ा कुत्ता रखा है, बहुत पावरफुल डॉग रखा है और आप गेट कैसे खुला था बंद नहीं था कि जो भी आप अंदर चले ही गए, आप जानते हैं अपॉइंटमेंट लिए होंगे फोन में कि मैं आऊंगा, लेकिन आप वो पता नहीं था कब भी आ जाएंगे, सुबह सुबह आप पहुंच गए गेट के अंदर, घुस गए तो कुत्ता सुबह सुबह तो अपना खुला था शायद, इसे भी वो देख लिया कुत्ता तो एक बार आवाज करके पंजे उठाकर भागा, तो आपने तो देखकर क्या करेंगे अभी अगर आप उसे अटैक करने के लिए जाएंगे अटैक तो कर नहीं पाएंगे, आप कोई डंडा फंडा देकर दो चार पीट देंगे लेकिन आप तो खा जाएगा वो, फिर आप केस नहीं करेंगे मुझे ही काट दिया करके, कोई नहीं सुनेगा आपको, आप ही मारा जाएंगे मरने का नौबत। लेकिन इसी अवस्था में कुत्ता देखते ही दौड़ कर यहां से आ रहा है निरुपावस्था में अगर आप बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि बड़ी विकल आवाज से चिल्लाओ, ओ प्रभु जी, उनके जो मालिक नाम लेकर के, प्रभु जी बचाओ बचाओ, मर गया कुत्ता, हरा खा जाएगा आपका कुत्ता, मुझे मर रहा, बचाओ बचाओ आवाज दिलाओ। और वो प्रभु जी भी है नहीं, कोई घर में कोई बैठे होंगे, सोए होंगे, उचके होंगे, लेकिन जैसे उनका विकल आवाज उनके कान में पड़ेगा, वो सोचे रे 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 कुत्ता खुला है कि ये आ गए क्या, तो वहीं घर में बैठ कर ए मोती चुप, कुत्ता का नाम जो होगा वैसे घर बैठ करके आवाज दिला देंगे। नहीं ऐसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ?
नहीं हुआ।
ऐसे आवाज देंगे, उनके आवाज सुन करके कुत्ता का रूप बदल जाएगा। फिर जो कुत्ता उग्र रूप लेकर के आपको पूरा अटैक करने खाने के लिए आता होगा, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाएगा, और इतने में ही धीरे धीरे आएगा। अब देखेगा कि मालिक आ रहा है, मालिक आपके हाथ पकड़ रहे, चलिए चलिए, तो फिर वही कुत्ता आएगा जो आपको मारने के लिए उग्र रूप में आ रहा था, आप करे पूछ हिला करके आपको सूंघेगा, आकर ऐसे ऐसे करेगा, लग चला बिल्कुल ऐसे वेलकम करेगा। तो इसे जैसे मालिक का कुत्ता है, इसे माया भगवान की ईसाई है। भगवान को आप इसे विकल अवस्था में फुकारेंगे, आर्त स्वर में चित्कार करेंगे, फुकारेंगे, प्रभु बचाओ बचाओ, वो खा जाएगा मुझे, तो भगवान अपने गोलक धाम बैठ कर ए मोती चुप एक आवाज दे दे, तो कुत्ता पूछ हिलाएगा फिर आपके साथ। माया पूछ हिलाते हिलाते आपको बड़े प्यार करते सुनते सुनते ले जाएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ बिगाड़ेगा। हमारे साथ तो कई बार ये घटना हुआ है, दिल्ली अगर हम तो बहुत रखते हैं कुत्ते, ओ खाने के लिए बुलाते हैं, हम जाते हैं देखते हैं कुत्ता, अरे कैसे जाएंगे, तो घूम रहा है इधर, वो तो नहीं कुछ नहीं करेगा। अब जो दौड़ कर आता है इधर हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल उनको भरोसा है कि मेरा है, मेरे ऑर्डर में बिल्कुल चुप, कुछ नहीं करेगा, वो सही हो जाता है। नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार इस माया के चंगल से बचने के लिए एक ही उपाय है, भगवान को विकल उठाकर फुल सरेंडर पुकारो, आवाज करो, तो उनकी आवाज से फिर वो माया संत हो जाए, आपका अटैक ना करे। तो भरत महाराज के दशा हुआ, हिरण बन गए, तो उनका जन्म हुआ लगभग गंगा किनारे इधर हरिद्वार के पास कहीं, देखो सीधा शरीर छोड़े कहाँ, पुलह आश्रम में, और दोबारा पैदा हुए वहां हिरण बन करके। लेकिन इतने भजन साधन किए थे, देखिए भक्ति के प्रभाव है, भक्ति एक ऐसी चीज है जो अविनाशी है। भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायति महतो भयात्, थोड़ा सा भी कोई करे वो तो नष्ट नहीं होगा। प्रत्यवाय न विद्यते, उसके प्रत्यवाय दोष नहीं, उसके नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता, भक्ति ऐसे, बाकी सारे चीज नाश हो जाता है, भक्ति नाश नहीं होगा। तो भले वो पतन हुआ उनका, हिरण के शरीर में आए, लेकिन उनको बिल्कुल याद था मैं गलती किया, ये याद रहा उनको, ये भक्ति के प्रभाव था, याद रहा कि देखो मैं एक दिन भगवान ऋषभदेव के पुत्र था, बड़े पुत्र था, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा था, मेरे नाम में भारतवर्ष के शासन में करता था, ससागरा धरा चक्रवर्ती राजा था, मैंने इतने विरक्त भाव मन में आया, घर द्वार राजपाट परिवार सब छोड़कर जंगल में जाकर भजन कर रहा था, जंगल में जाकर के हिरण के बच्चे के प्रति मेरा आसक्त हो गया, मेरे ये दशा हो गया, बड़े दुख लगता था हमको, बोले मैं बहुत गलती किया। ओ अनुतप्त हुए, अनुताप करते हुए, हिरण के बजाय तो दो दिन में तो यंग हो जाते हूँ, यंग होकर के अपने झुंड के साथ जाता था, अपने माता हिरण और अपने साथी हिरण झुंड के साथ जाता था चरने के लिए जंगल में, लेकिन कभी वो हरी घास भी नहीं खाते थे, इतने उनको दुख होता था, पीड़ा होता था, बोले ना क्या मेरा जीवन है, मैं इसी गलती करके इस दशा में आया, इसे अनुतप्त, इतने रिपेंट करके खाना ही नहीं खाते थे, उनके साथ जाते थे, शरीर तो चलाने को कुछ खाना ही पड़ेगा, तो सूखे पत्ते इधर उधर, सूखे घास जो कोई नहीं खाता है उसी को खाते थे, बाकी हिरण सब अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं जो सॉफ्ट नहीं, जो नए नए निकलते हैं घास, ताजी घास, बिल्कुल न्यू लीव्स जो होते हैं, तो उसको सब खाते खाते मुलायम घास चले जाएंगे, वो जाएंगे जो सूखे पत्ता रिजेक्टेड उसी को खाते थे जाकर, जो कोई नहीं खाते थे, क्योंकि उनका शरीर के प्रति मोह खत्म हो चुका था, वो नहीं चाहते थे मैं शरीर को हैंडसम बनाऊं, ऐसे खाऊं, ऐसे, नो, बोले मेरा कितना राज शरीर था, आज मैं थोड़ा सा गड़बड़ किया तो हिरण बन गया। तो उनका ये महान अनुतप्त हुआ करता था, तो इसलिए मोह छोड़कर के सूखा घास आते थे, उसमें भी रहे कुछ दिन। कुछ दिन के बाद उनके मन में आया, क्या करूं, मेरे कैसे उद्धार होगा, हिरण बन गया। हमेशा रोते थे उन्होंने, हिरण के झुंड में रहते हुए भी, हिरण के शरीर में भी हमेशा उनका आंख से आंसू गिरता था। और तपस्या करते थे, सूखे पत्ते घास खा करके, ज्यादा दिन भी टिक नहीं पाए, उनके हिरण की झुंड में भी नहीं रहे, वहां से अकेले निकल पड़े। पहले राजा जो छोड़कर गए थे, हिरण के झुंड छोड़ने उनका कौन पड़ी है, वही भाव उनका अंदर आया। वो इस हिरण को झुंड छोड़ करके अपना जन्म स्थान, अपने कर्म स्थान, अपने चरगाह की भूमि छोड़ करके चलते 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 पैदल में हिरण के शरीर में, बोलते यहां से चलते चलते दोबारा वही याद था, पुलहासन चले गए। अरे वही हिमालय के किनारे किनारे गंडूकी चले गए, वही जाकर पहुंच गए जहां पर उनका पतन हुआ था, जिस नाला था बह रहा था गंडूकी नदी, जाकर इस गंडूकी नदी, पवित्र गंडूकी नदी, जिसको साक्षात वृंदा देवी माना जाता है। वृंदा देवी की जो शरीर है वो है गंडूकी। तो गंडूकी नदी में जाकर के प्रवेश करके गला तक पानी में उतरे, यहां तक क्योंकि पशु है, यहां तक कंठाग्र तक जल में रहे, गंडूकी जल में प्रवेश करके महास्रोत में ऊपर आवाज मुंह करके भगवान की स्तोत्र पढ़ते हुए शरीर छोड़ दिया। खान पान तो किए नहीं, इतने दूर चलते चलते गए, वो खा नहीं रहे थे, जाके प्रवेश किए गंडूकी नदी में प्रवेश करके, ऐसे पानी के अंदर रह करके ऊर्ध्वमुख कर करके भगवान को प्रार्थना करते हुए शरीर छोड़ दिए। भाव ऐसे वर्णन कर, इस प्रकार शरीर छोड़े तो उनको फिर एक ब्राह्मण शरीर मिला। अब ब्राह्मण शरीर मिला, बड़े कुलीन, उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, उनके 5 बेटे थे, ये सबसे छोटे बेटे हुए, 4 बेटे उनके और बड़े थे, ये 5वां संतान हुए। ओसे ब्राह्मण बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे, बड़े स्तोत्र स्तुति सुजानते, पुरोहित काम करते थे, पंडितगिरी करते थे, बड़े जाने माने ब्राह्मण थे, कुलीन ब्राह्मण थे। तो जन्म जिस दिन से हुआ, उनको तो पहले से राजर्षि भरत का याद था, हिरण भी याद था, और भी याद रहा जैसे जन्म हुए ना, तभी समय से उनके ज्ञान था। उन्हें ना तो पिता के प्रति ना माता के प्रति आसक्त हुए, ना राजा ज्यादा रोना धोना किए, वो उसको पालते रहे छोटे बच्चे करके, बड़े प्रेम से माता पिता ने पालने लगे तो पालते गए, लेकिन निरासक्त भाव थे, जन्म से अनासक्त भाव था। अनासक्त भाव हुआ, वो रोए भी नहीं, हंसे भी नहीं रहते, ऐसे फास्ट कैसे हम सभी का ये संसार में वेलकम हुआ रो रो करके, है ना, हमारा ओपनिंग कहां से कैसे होता है, रो करके होता ना, हाँ हम सब आए रो करके जाएंगे रुला करके, ये हमारा ओपनिंग का एंड होता है। लेकिन उन्होंने ना तो रोए ना हंसे, ओ माता पिता देखिए बच्चा कैसे रोता भी नहीं और हंसता भी नहीं। अब बोले नहीं, थोड़ा कुछ हुआ होगा गूंगा, कुछ दिन के बाद रोएगा कि हंसेगा कुछ करेगा, 2-3 साल के 4 साल के तब भी कुछ नहीं, ना कुछ बोल रहा है, ना रो रहा है, ना हंस रहा है, खा पी रहा है खूब, सब खा पी रहा है, सुन रहा है, सब करे, ना कुछ नहीं रोना धोना हंसना कुछ नहीं करता। वो उनका बड़ा चिंता होगा माँ बाप का, सर छोटा लड़का है ना, छोटे लड़का के प्रति माता पिता ज्यादा अटैच होते हैं, तो थे भी उनका शरीर बड़े डोल डाउल था, मतलब अच्छे ढंग का शरीर था उनका, तो उनको देख करके उनके भाई लोग भी और माता पिता भी और अड़ोस पड़ोस के परिवार को सब बोलते, इतने बढ़िया लड़का कुछ बोलता बोलता नहीं, पता नहीं किसे गूंगा है, सुनता भी नहीं कुछ, मैं सुनता तो है कुछ बोलता भी नहीं, समझ में नहीं आता कुछ, सुनता तो है बोल नहीं पाते, समझ भी नहीं आता। कभी कभी लोग दिखाई पड़ते हैं गूंगा, गूंगा मतलब जो बोल नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता, लेकिन ये तो गूंगे बहरे रहते हैं। जड़ जो होते हैं इसे क्या होते हैं, जड़ किसी बोलते हैं, ना तो मुख है ना तो बधिर है, वो क्या होगा, जिसका दिमाग आउट हो गया उसको बोलते हैं जड़, समझे ना, वो सुनता सब कुछ है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, वो इसी ठुंडा बैठा रहेगा, नो रिएक्शन, जड़ पदार्थ हम कहते हैं ना, इसे जड़ पदार्थ है। उनको मारो पीटो गाली दो टोंट करो क्रिटिसाइज करो जो रिएक्शन करेगा तो ऐसा ही थे उन्होंने। उनको कितने प्रेम से हिलाएंगे खिलाएंगे थोड़ा हंस के हंसाने के लिए कुछ नहीं होगा, रुलाने के लिए ना रोएंगे ना हंसेंगे कुछ से नहीं, ऐसे बैठे ऐसे बैठे। तो इसको जड़ कहा जाता है जिसमें नो रिएक्शन, कुछ एक्शन ही नहीं होता। आप उनको प्रशंसा करो गाली दो मारो पीटो खिलाओ पिलाओ सुलाओ जो भी करो कुछ नथिंग नो रिएक्शन, उसे बोलते हैं जड़। तो ऐसा अभिनय करते थे, ऐसा नहीं कि उनका सचमुच जड़ थे, उन्होंने जन्म से ऐसा किए उन्होंने, यहां तक उनके पिताजी भी उनके माताजी उनके चारों भाई और उनके पूरा कुटुंब उनको सब बोलते कितना सुंदर बालक यार जड़ बन गया। तो उनका पिताजी बहुत सारे दवाई पानी करते थे कहीं से मेडिसिन बढ़ी देना कैसे ठीक हो जाएगा अच्छा लड़का है, वो जो डॉक्टर टेस्ट कर देते लगता तो नहीं कोई सिम्टम जड़ का, कोई लक्षण दिखता नहीं, जानबूझकर कुछ बोलता नहीं क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे कोई खट्टा खिला दो थोड़ा ये हो जाए, मिर्ची खिला दो थोड़ा तेज, कुछ भी नहीं होता नो रिएक्शन, कड़वा खिलाओ मिर्ची खिलाओ मीठा खिलाओ नथिंग कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो दो जन्म के एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो इस जीवन का, उनको पता है ये सबसे कुछ नहीं है, बहुत अभिज्ञ पुरुष। ये अभी अभी क्या है उनके सामने जूनियर है उनका माता पिता, वो उनको क्या सिखाएंगे, इसमें नए बच्चे हैं नौ सिखाए उनके सामने, लेकिन वो माता पिता के रोल कर रहे थे। तो उनके पिताजी देखे कि मेरा बेटा इतने सुंदर लड़का है, मेरा ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण घर का लड़का है छोटा, बाकी बड़े बड़े लड़के जैसे पढ़े लिखे हो तो अपना धंधा पानी करके वो अपने शादी विवाह कर रह जाएंगे, ये लड़का कैसे गृहस्थी करेगा कैसे जिएगा जीवन कैसे चलाएगा, बाकी कोई धंधा बढ़े तो कुछ करे ना कोई नौकरी वोकरी तो मिलेगा नहीं उसको, तो कम से कम पुरोहिती कर ले कोई दान दक्षिणा मिले तो अपना जीवन तो चल जाए है ना, नहीं कोई सत्यनारायण पूजा पाठ कर लेगा कुछ कर लेगा तो इसमें तो उनका रोजगार थोड़ा हो जाए, तो इसलिए उनको जेन्यू दिला दिए, बोले कम से कम ब्राह्मण मानकर कोई तो भोजन भोजन करा देगा कोई दान दक्षिणा देगा, जेन्यू दिए। लेकिन जेन्यू लेकर के त्रिसंध्या करना चाहिए, तो उनको गायत्री सिखाने बैठे, बोले अगर तू जेन्यू पकड़ करके गायत्री करेगा तो आपको ब्राह्मण के मान्यता देंगे लोग और आपको सेवा करेंगे भोजन देंगे सम्मान देंगे, तो इसलिए उनको बैठा करके खूब ध्यान से सिखाते थे। तो ऐसा करके थोड़ा कम से कम एक्शन करते रहना गायत्री का। भरत महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरे पिताजी महीने दिन तक छह महीना तक लगातार कई घंटों उनको पीछे प्रयास करते थे सीख जाए मेरा बेटा कम से कम संध्या वंदना सीख जाए। भरत जी कहते मुझे क्या सिखाए, मैं तो पहले से सिखा हुआ था, मेरा पिताजी नहीं जितना जानते मैं जो तत्व को जानता हूँ वो तो नहीं जानते थे, वो मुझे क्या सिखाएंगे। लेकिन वो सिखाने के बुरी तरह से प्रयास किए, मैं तो कुछ नहीं हो रहा था, मुझे मालूम था कि मैं सब करूँ ये सब करके मुझे तो जीना ही नहीं, ये सब शरीर से मैं तो टाइम पास करना चाह रहा था, मेरा ध्यान जो था वो था। लेकिन उन्होंने इतने प्रयास करते 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 बोले उनका ये दुर्भाग्य रहा, भरत जी का स्टेटमेंट है पंचस्कंद भागवत में, उनका ये महादुर्भाग्य रहा मेरा पिताजी के क्या कि उन्होंने घर में ही अपना शरीर छोड़े, घर में केवल घर में नहीं सारे पुत्र पुत्र वधु पौत्र पौत्र वधु और परिवार और सारे सगे संबंधियों के बीच में शरीर छोड़े, ये उनका महादुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य, न निश्चित रूप से फिर वही घर में मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं, आयदर एक चूहा नहीं तो सांप नहीं तो छिपकली ये बनकर आएंगे, यही उनका गति होगा हम सभी का, जो घर में इस प्रकार जाएंगे उनके सभी का ही गति हो। इसलिए भागवत कहता है, हम मानते हैं आजकल अरे कितना बढ़िया मरते समय सब आ गए, उनको फोन कर बुलाया, वो भी अमेरिका से आ गया, वो भी लंदन से आ गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आ गया, वो भी इधर से आ गया, सबके सामने कितना अच्छा है। लेकिन भागवत कहता है सबसे घटिया दुर्गति उसी में होता है, केवल यह नहीं भागवत के तीसरा स्कंद विदुर जी का प्रसंग, धृतराष्ट्र गांधारी की ऐसे बात किए उन्होंने, बोले गेट आउट, उनको निकाल के लिए बोले मरते समय यहां मत मरो बेकार हो जाएगा शरीर गति बिगड़ जाएगा, उनको लेकर के बोले जाके जंगल में पड़ के मरो सदगति होगा। भागवत के सिद्धांत है अंत समय में अगर कोई भी परिचित व्यक्ति आपके साथ में आ गया इसी में अटैच हो जाएगा फिर जन्म लेना ही पड़ेगा, अगर कोई नहीं आया मरते समय महाजंत्रणा होता है इतने दुख जंत्रणा में कितने फुक्कारो चिल्लाओ कोई नहीं आया तो इसे असहाय निस्सहाय अवस्था में कौन याद आएंगे, भगवान याद आए। दुख में सुमिरण सब करे सुख में करे ना कोई, ऐसा दुख है तब हरि स्मरण आएंगे। थोड़ा सा कोई सहायता मिले तो भगवान को कोई ना पूछे, कोई नहीं पूछेगा। तो इसीलिए कहता है कि ऐसे स्थिति में डालो ताकि कोई ना आ पावे, तो बरबस हरि के स्मरण आएगा, उनकी याद करेंगे, तब फिर आपका बन जाएगा गति। लेकिन हम तो करते नहीं। तो इसीलिए भागवत सिद्धांत दिया गया कि वन में चले जाओ, वन में से जाकर फिर सबको छोड़ करके मत से बिल्कुल संन्यास एकांत में रहो, ताकि कोई चिल्लाने पुकारने पर भी कोई ना आ पावे, तो फिर हरि स्मरण होगा। लेकिन तो बोले कि पिताजी कैसे ऐसे देहांत हो गया, माताजी भी ऐसे गई। तो उसके बाद में माता पिता चले जाने के बाद में भाई लोग शादी कर लिए थे, मुझे तो कोई शादी करेगा ही नहीं मैं बड़ा हो चुका था, बोला मैं बड़ा हो चुका था, अब मुझे तो कोई पसंद नहीं करते थे, जड़ है वो तो भाई लोग भाभी लोग कुछ मुझे खाना पाना खिलाते थे। थोड़े दिन के बाद उनका तो भैया भाभी का मन में आया, इतना बड़ा भंडिया पुरुष दो दो किलो खाता है, कुछ करता नहीं है, तो बोले उससे कुछ काम लेना चाहिए। तो एक एक भाई बुलाते थे, चलो हमारा खेती में काम करना, तो ले जाते थे। बोले मुझे पूरा समझ आता था खेती कैसे करना है, क्या करते, मुझे पूरा पता था, मुझे ले जाते थे, मैं बिल्कुल ओबीडियंट होकर जाता था, भरत गशन बहुत नम्र होकर जाते थे। जा खेती में बोलते देखो ये मिट्टी यहां से उठा करके यहां डालने का, दो तीन बार करके दिखा देते थे, जड़ ना सिखाने के लिए खुदाई करके मिट्टी टोकरी में डालते, फिर यहां लेकर डालो, करते थे, करेगा और एक बार उनका सामना करके भी दिखाता था। ओके गुड, ऐसे करते रहना, मैं जा रहा हूँ शाम तक करके इतना सारा मिट्टी उठा देना, ऐसे करेगा, एक दो बार करेगा, जैसे देखेंगे वो चला गया, यहां से मिट्टी लाकर यहां डालेंगे बिल्कुल उल्टा करेगा और जहां से कर रहा था, जहां से मिट्टी उठाकर जहां डाल, वहां से उल्टा लाकर वहां से डालेगा। वो शाम को आके देगा, अरे मर गया कितना गाली देगा, गाली सुन सुनकर तो कुनोर एक्शन, पत्थर को गाली देगी, सही सही है, जड़ है वो तो, जड़ को गाली देने से कोई एक्शन होता है क्या? जड़ जैसे ये गद्दा है, टेबल है, मार्बल है, उसको गाली दो क्या फर्क पड़ता है उसका, वैसे ही कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऐसे बैठे देखता था आराम से, सब सुन लेता था वो तो वैसे हताश होता, बोले बेकार मेरा मुंह खराब होता तो कुछ बनेगा नहीं, कुछ बेकार क्या गाली दूं, आपस में खुश बिगड़ कर बोले उसको काम में नहीं लगाना चाहिए, काम देने से बिगाड़ देता है यार इतने हट्टा कट्टा मोटा शरीर है, काम भी लगाया इतने करके सिखाया लेकिन सारे उल्टा मुल्टा कर दिया। तो दूसरे दिन दूसरे भाई को बोला मैं उसको खाना पीना नहीं दूंगा, दूसरे भाई बोला चलो अरे भूखा पड़ा है, चलो मेरे पास आओ मैं खिलाऊंगा, तो चला जाएगा उनके पास, बोला तो रोटी वोटी खिलाएंगे, बोले चलो मेरा काम करना, मेरा ऐसा करना है कि वो जो घास है ना, मैं घास उखाड़ता हूँ उसको रखता हूँ, तो थोड़ा हाँ चले गया उनके साथ, जाए खेती में बैठ करके जो धान के पेड़ है और घास के पेड़ है उनको सिखा दे, देखो ये घास ऐसा है उसको उखाड़े फेंक देना, दिखाया करके दिखाया, बोले चलो ये करते रहे हाँ करूंगा, मैंने बोलेगा तो नहीं ऐसे ऐसे किया, तो उन्हें आ गए सारे धान के पेड़ उखाड़े फेंक दिए घास को छोड़कर, हो बोले मरवा दिया, अरे नहीं करता तो अच्छा करता, सारे उल्टा कर दिया मुझे भी मरवा दिया सारे खेती नाश कर दिया तूने, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोलने से गाली देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पत्थर है तो जड़ है, तो अभी खाना पीना बंद कर दे। तीसरे भैया के पास कोई किसी प्रकार काम में लगाए सब उल्टा पुल्टा जानबूझ कर करते थे, ऐसा नहीं ताकि वो उनको काम में न लगाए, फिर उनको पड़ी नहीं खाना पीना नहीं दो क्या मेरा पड़ता है। तो बाद में चारों भाई उनको खाना पीना देना बंद कर दिए, बोले हट घर से निकाल दिए, तो पेड़ के नीचे सोता था, कोई कंप्लेन नहीं था, जड़ है पेड़ से सोता था, उनके घर के सामने पेड़ के नीचे बैठता था, कभी नींद आता सो जाता था, कभी जाकर बैठता था, कोई गामछा नहीं, कपड़ा नहीं, साबुन नहीं, कभी नहान के मन कर पानी में डूब लगा उठकर आ गया इसे शरीर छाट दिया बैठ गया, कोई गामछा नहीं बैठ गया। तो बोलते थे क्या है हमारा छोटा भाई ये इसी जड़ निकला, भूखा बैठा चार दिन तक, तब भी कुछ नहीं मांगता किसको, तो घर में जो जला हुआ सड़ा हुआ ऐसे पदार्थ फेंकने थे ना जो भिखारी के देने के लायक भी नहीं, बोले चलो उसको दे देते, तो उसको दे देते फेंकते थे, लो तो बड़े प्रेम से फिस्ट मानकर खाता था उसको, बिल्कुल रिजेक्टेड आइटम जो जल गया है सड़ गया है बासी हो गया है जिसको कोई नहीं खाते फेंक देते, ये आइटम को अपना फिस्ट मानता था, बड़े प्रेम से खाता था, वो भी तंग हो जाते थे, ये भी उसको फर्क नहीं पड़ता, उनको तो कोई तीता कड़वा मीठा किससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस मुंह के पेट में कुछ डालना है डाल देते थे, कोई गाली अपमान किससे मतलब नहीं था। तो बाद में उनके गांव वाले देखे बोले इतने हट्टा कट्टा शरीर हो, उनके भाई लोग भी उनको छोड़ दिए, इसे पागल की तरफ होंगे, नहीं कुछ तो काम में लगेगा, कुछ काम में लगाना चाहिए, एक दिन गांव वाले उनको बुला के ले गए, क्या अच्छा नहीं बोला तो आप, उनके भाई लोग बोले देखो ये काम में लगाया था इसे गड़बड़ के, ये काम है इसे गड़, इस काम में इसे ना इसी काम में लगाया ना हम दूसरे काम में करेंगे, क्या कोई काम नहीं देंगे, खाली बैठे रहे वही काम है, बैठे रहे क्या काम है ना, मेरा वो खेती है ना उसमें वो चिड़िया और पशु आकर खा जाते हैं, मेरा बड़ा कीमती खेती है, वहाँ उसको बैठा दूंगा मैं पुतला पुतला बना, देखा ना कभी खेती में बेगना खेती में कोई खाना जो पुतला बैठे, पुतला के जैसे तो पुतला ही है, उसको बैठा दूंगा मंच करके उसको बैठा दूंगा, बैठा देगा तो जीवंत पुतला है, तो उसको देख करके हट्टा कट्टा सर भी कोई पुतले चिड़िया पशु नहीं आएंगे, मेरा खेती का चौकीदारी करेगा रखवाली करेगा करेगा, हाँ मन मथा हिला हाँ चला लेकर बैठे थे, बोले बैठे देना बस बैठे रहे, बस सारे पशु आए थोड़ी देर देखे फिर आए देखे कुछ नो रिएक्शन, फिर आके खाए कुछ नहीं, वो फिर घुस के खाए कुछ नहीं, पूरा खाए नथिंग, बैठा आराम से। वो आदमी आकर देखा रही तो थुंडा बैठा है बरगज की तरह, सारे खा रहे, वो बोला तू पागल तू मेरा खेती उजाड़ दिया, वो कोई गाली देने से क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले इसी काम के लायक भी तू नहीं बना, वो भी उसे निकल दिया हट यहां से, तो जाकर कहीं बैठा था तो जंगल में जंगली लोग होते हैं, जंगली लोग शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट होते हैं, उन लोग का अलग प्रकार संस्कार होता है, वो लोग वन देवी की पूजा करते हैं, जंगल में देवी होते हैं ना शक्त होते हैं, देवी की पूजा करते हैं लाल सिंदूर फिंदूर लगा करके, और वो उनका मान्यता है देवी अगर प्रसन्न हो जाए सब हम समृद्ध हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाए, देवी कैसे प्रसन्न होगी ना एक पर्टिकुलर तिथि में नर बलि देना होता है, कोई मनुष्य को पकड़ कर उनके सामने अगर बलि चढ़ाएंगे उसके रक्त उनको दिया जाएगा तो देवी माता प्रसन्न हो जाएगी, तो उस रक्त को लेकर जमीन में डालेंगे ये सब करेंगे सब अपना जमीन बढ़िया खेती होगा ये होगा सब उनका इस प्रकार के भावना है। तो उनका जब तिथि आया, एक साल में एक बार तिथि आता है वैशाख महीना में, तो तिथि में फिर तो ढूंढते हैं नर बलि चढ़ाने के लिए देवी को प्रसन्न करने के लिए, तो ढूंढते हैं, तो उनका जो सरदार था तो उन्होंने बोला था देखो इस तिथि में देना है आप जाओ ढूंढ करके इसे लाना है देवी के प्रसाद, तो बेचारे 10-20 लोग गए होंगे जाकर ढूंढते 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 एक आदमी को पकड़ कर लाए थे किसी भी कैसे कहीं से उठा कर लाए थे, और जैसे उनको पता चला मुझे बलि चढ़ाने वो तो बेचारा बड़ी प्रयास ढूंढ रहा था आके रखे थे अब कल बलि चढ़ाना है अब कैसे इधर उधर का वो फिसल गया भागा जान से चला गया, अरे इतने गाली पड़ा इतने डांटे बोले बेकार तू देवी का प्रसाद निकल गया भाग गया क्या चढ़ा गया क्या कर गया, बहुत डांटे उनको सरदार ने, तो सब दुखी होकर ढूंढ रहे थे दूसरा किसी को पकड़ के लाएंगे कोई एक मनुष्य को लाएंगे बलि चढ़ाने के लिए, और देखे कि ये बैठा हुआ है, बोले वो बहुत बढ़िया बलि है इतना सुंदर शरीर है, वो तो दुबला पतला था वो भी भाग गया, ये हट्टा कट्टा है सब प्रस्तुत रहना रस्सी भी लेना लाठी भी लेना पकड़ कर तुरंत बांध लेंगे बांध कर उठा कर ले जाएंगे, तो छिक छिक करके छिप छिप करके चारों तरफ से आए आ करके जम किए उसका ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हाथ बांधे पैर बांधे हाथ बांधे दे दिया बांधो पैर बांधो कुछ करो, तो उनको लगा अरे ये कैसा व्यक्ति है इतना हट्टा कट्टा मोटा है कुछ अपोज नहीं कर रहा है हम उसको बांध रहे हैं घिसक रहे हैं वो कुछ नहीं उसको हो रहा है, तो उनको समझ लगा कुछ तो गड़बड़ी है, उसको उठा के खड़ा किए खड़ा हो गया चलाए चलाए बोले अरे बंधन खोल दिए तभी चल रहा है, बोले अरे उसको तो खुले में खुला ले जाए तब भी कुछ नहीं भागता कुछ नहीं करता ये तो बढ़िया बलि मिल गया हमको, तो उसको साथ में लेकर खुशी खुशी में गया उनके साथ ले गए उनको लेकर के उनको बैठा दिया उनको समझा देखो तुम बलि तैयार है वो खुश हो गया अच्छा तो उनको लेकर के बलि जिसको चढ़ाना होता है ना उसको हल्दी पानी में स्नान कराना होता है सिंदूर के टीका लगाना होता है तेल मसाज किया जाता है फिर उनको पूछा जाता है कि आपके इच्छा क्या है क्या वस्तु खाना चाहते हैं क्या प्रसन्न है वही खूब खिलाएंगे फिर लास्ट में ले जाएंगे कि लाल फूल का माला पहना के जवाब फूल का फिर कटवाएंगे, तो उसको आकर पूछे दूसरे दिन सुबह स्नान टान करा कर तेल फल लगा करके और उनका सरदार आकर चेक किया बोला ओ सच्चे बिफिटिंग भोग है देवी के लिए ऐसा बलि तो अब तक कोई नहीं मिला इतने साउंड हेल्थ है कोई मिस्टेक नहीं कहीं काट फीट छुटा कहीं नहीं है कोई झूठा नहीं किया परफेक्ट भोग है इसके लिए देवी के लिए बहुत प्रसन्न हो गया बिफिटिंग लाए आपने और देवी तो निश्चित प्रसन्न हो जाएगी, तो उनको बोले कुछ खाने के लिए से कोई बोलता था नहीं बोले चाय खाने गए ऐसे मुंह ला बोला हाँ चाहिए तो ला कर दो भरपेट खिलाओ उसको खुश हो जाए तब उसका गला काटेंगे। तो ला कर थाली भर करके पकवान मिष्टान्न दे पूरा खा गया थाली की थाली खा भर कई दिन से खाया नहीं तो सारे खा गया। तो लगे कैसा आदमी है नो रिएक्शन कुछ बचने का प्रयास भी नहीं करता है डर नहीं भय नहीं कुछ नहीं उनका मन में एक भ्रुकुंचन भी नहीं है। तो खिला पिला करके उनको माला पहना कर ले गए लेकर के हथियार बजा करके बिल्कुल धार करके रखे। तो उनको बोले कि एक बद्धशिला होता है लकड़ी का ऐसे होता है ऐसे इसके ऊपर गला रखना होता है फिर मंत्र पढ़ करके खूब जोर से बाजा बजेगा ओ तलवार खूब तेजी से दो हाथ में चला गया जिससे एक साथ में गला अलग हो जाए सर और धड़ अलग हो जाए। तो उसको बोले लेकर रखो वो जाकर आराम से रख दिया कोई परेशानी नहीं कोई धक्का मकन एक बार ऐसे वेल प्रिपेयर्ड है जाकर रख दिया गला। तो जब भी काटा जाए ना काटो वो नगड़ा बजाने लगे और जो घातक जो सरदार था उन्होंने तलवार बजा करके उठाया। अभी भी उनका मन में थोड़ा सा आपको कोई मारने चल रहा थोड़ा सा मुख में विकार तो आएगा ना इसे तो करेंगे ना आपको कोई सुई चढ़ाने के लिए थोड़ा इसे लगता है कोई आपका गला काटने के लिए तलवार उठाएगा तो आपको लगेगा नहीं नथिंग कोई फीलिंग निर्विकार शरीर क्यों उनका पूर्ण विश्वास था मुझे ही क्या मारेंगे। अरे तुझे गले में बद्धशिला में रख करके हथियार उठाना नथिंग वो भी फिर नहीं कर पाएंगे इतने विश्वास उनका था। हमेशा ब्रह्म चिंतन करते थे जब तलवार उठा करके चोट लगाने ही वाला था तब भी कुछ नहीं हो रहा था सब बड़े बड़े आवाज करके खूब जोर से नागड़ा बजा रहे थे। तो जो देवी सामने थी वो देवी स्वयं प्रकट हो गई मूर्ति से बाहर निकल करके आकर के वो जो खड़ग लेकर गला काटना उसका हाथ से खड़ग छीना पहले उनको मार दिया उनको काटा उनका गला उतारा और जितने इधर थे गांव वाले सबको मार दिया सकड़ों के गला काट दिया रक्त के फवारा चल पड़ा इधर देखा सबको सारे मर गए उठ करके फिर चल पड़े आराम से ऊं की चूं कोई शब्द नहीं। देखा कि देवी मूर्ति से प्रकट हुए उनके हाथ से तलवार छीन करके वही पूरे गांव को कार मार कर कार दी कई सैकड़ों लोग के मर्डर हो गया। थोड़ा आहा ओहो कुछ बोलना ठीक है इतने सारे कुछ नहीं के चुपचाप उठ के फिर चल पड़े कई रक्त उनके शरीर में लगा होगा ठीक। देवी बोले मेरे कैसे देवी अपने चले गए वो अपने सब मरवा के फिर खा पी के तो खा पी ले तो फिर आगे जंगल में घूम रहा था तभी भी किसी को आवाज नहीं कर रहा था मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। अब जंगल में घूम रहे थे तो एक राजा थे कश्मीर के जिनका नाम था राहुगण कश्मीर प्रदेश के राजा थे वो थे बड़े भगत। उन्होंने भागवतम क्लास सुनने के लिए भगवान कपिल देव रहते थे गंगा सागर में भगवान ने भगवत प्रवचन करेंगे ये घोषणा हो चुका था डेट फिक्स हो चुका था। तो राजा ने कपिल देव से भागवत सुनने के लिए कश्मीर से जा रहा था गंगा सागर पता है ना कितनी दूरी है तब जमाने में कोई ट्रेन प्लेन तो गाड़ी तो था नहीं तो इसलिए वो राजा लोग का उनका कहार होता है ना कि पलकी जानते ना मनुष्य ढोते हैं पलकी होता है कहार लोग ढोते हैं तो उससे बैठ करके राजा जाता था कहीं क्या होता कहीं रहता होगा फिर इतना लंबा टूर जाता था भागवत सुनने के लिए कश्मीर से चल करके गंगा सागर जाता था। हमको तो ये नंबर फ्लैट से ये नंबर फ्लैट आने में टाइम नहीं आएंगे तो कैसे कल्याण होगा हमारा है ना। रोज आते थे फ्रॉम कश्मीर और तभी जमाने में कोई ट्रेन प्लेन नहीं कितना दिन पैदल में चल कर ले जाए कितना दिन लगेगा जाने में केवल अरे महीना दिन से ज्यादा लगी जाएगा कहाँ कश्मीर दिस एंड टू दैट एंड पूरा नॉर्दर्न एंड से ईस्टर्न एंड तक जाएंगे भारतवर्ष के इस पार से उस पार पैदल में जाएंगे कितने नदी कितने जंगल कितने पहाड़ कभी तभी जमाने रोड ब्रिज थोड़ी फ्लाईओवर थोड़ी से बना था कुछ नहीं था पैदल में जाना होता था कई महीना लग जाएगा जाने में कई महीना आने में वो 6-7 दिन के क्लास के लिए वो राजा था उनका हम इतने बिजी थोड़ी है उनके तरह वो टाइम निकाल कर जा सकता था इतने श्रवण पिपास हुए। तो उन्होंने जा रहा था लेकिन वो रास्ता देकर जा रहा था और रास्ता में उसका जो कहार होते ना कैरियर पलकुन कैरियर एक को डिसेंट्री हो गया तो सीख हो गया ढो नहीं पाया तो जो इंचार्ज था, जो अंगरखी दो चार चलते हैं बड़ी गार्ड, वो देखे कि बोले बिल्कुल चल नहीं पाएगा, बिल्कुल बीमार हो गया, तो श्रीजट को जाओ कहीं ट्रीटमेंट करो जाओ, राजा छोड़ दिया उनको, छोड़ दिए तो एक तरफ से चार, एक तरफ से तीन हुए, चल नहीं रहते, बोले 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 महाराज एक हार सीख हो गया एक नहीं है, ना कहीं से पकड़ कर लगा दो किसको, और सारे राज्य का राजा तो वही था, उसको थोड़ी किसी की सिलेक्ट करना अपॉइंटमेंट डाल, इमीडिएट किसी बोला लगा तो लग जाएगा, उनका ऑर्डर है, उसने कोई मना नहीं कर सकता। तो ढूंढ रहे थे जंगल के बीच में किसको ढूंढने के, पास में गाँव नहीं देखा, तो वो नजर में आ गया, कोई कपड़ा लता पहना नहीं, इसे घूम रहा था नंग धड़ंग, तो उसको देखे कि बहुत हट्टे कट्टे मोटे शरीर है, तगड़ा घूमना, बोले हाँ लाओ पकड़ के लगाओ उसको, जेनिफर में तो था नहीं उसका, तो कैसे बचा नहीं, कोई चिन्ह नहीं था शरीर में, कुछ वर्ण का है, कुछ आश्रम का है, कुछ ना था नहीं, तो उसको देखे बोले भाग ना जाए, जाए पकड़ने, कहीं भागेगा कहीं, बिल्कुल खड़ा होकर देख रहा था, बोले आओ आ गया, पलकी ढोना है, हाँ लगा दिया करना ढो, बोले अच्छा कहार मिल गया, ये सबसे बड़ा हेल्थ वाला है, साउंड हेल्थ उसका है, अच्छा गाड़ी में मिल गया, अभी चलेगा। अब चलने लगा तो ये जो कैरियर होते हैं पलकी वाले, उनका एक मेल होता है, ये एक पैर सब एक साथ में उठाएंगे चलेंगे तो फिर पलक ठीक से चलेगा, नहीं तो आप इधर ओ इधर, तो ऊपर जो बैठने वाला ऐसे ऐसे होता जाएगा, बहुत डिस्टर्ब होगा उनको, और वही करता रहता था, वो चलता था रास्ता में देखा कोई चिट्टी, सीधा पैर ऐसे करता था, वो इधर पैर डालता था, फिर इधर पैर डालता था, और ऊपर में जब बैठता है वो कभी आगे कभी पीछे कभी, उनमें तो कोई ये आजकल गाड़ी में क्या होता है सकअब्जर्वर ना, सकअब्जर्वर होता है, वहां तो कोई सकअब्जर्वर नहीं होता था, सारे शक उनको लगना पड़ता था, सब उन्हीं को ऑब्जर्व करना पड़ेगा तो बहुत उनको परेशानी होता था। वो राजा गाली दिया बिगड़ा उनने, बताऊंगा डांटा, बोला बदमाश कौन कर रहे क्यों, न महाराज हमारे ऊपर क्रोध मत कीजिए, नया अपॉइंटेड जो न्यूली अपॉइंट किया गया कहार ये बदमाशी कर रहा, हमारे साथ ताल मिलकर चलता नहीं, वो तो पैर उठाता है, इधर करता है उधर करता है, यही बदमाशी करता है। बोला अच्छा नया जो कह रहे हो इसे नहीं करता, उनको मेरा आदेश पता नहीं क्या, मैं राजा हूं ना महाराज सब पता है, लेकिन पता नहीं पागल है कि क्या है ऐसे कर रहा है, तो उन्हीं को लक्ष्य करके राजा राहुगण ने गाली दिए, बोले तू तो बहुत दुबला पतला है ना, जैसे कोई क्रिटिसाइज करके गाली देते ना, मट्टे कट्टे तगड़े आदमी को गाली देते किसान, हाँ 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 बिल्कुल शरीर में शक्ति नहीं है, बिल्कुल दुबले पतले है, कंकाल सारे है ना, है बड़े भट्टे कट्टे सब जानते, लेकिन ऐसे व्यंग भाषा में उसको गाली देते थे, शक्ति नहीं है शरीर में, ये नहीं है, ताकत नहीं, से गाली देते कर नहीं सकता। उनको कुछ गाली देने के बाद में जो जन्म से अभी तक उनके परिवार वाले से भाई से गांव से उनके सामने सैकड़ों लोग मर गए, मुंह नहीं खोले थे, आज प्रथम बार उनके मुंह से शब्द उच्चारण हुआ, पहली बार इस केस में शब्द उच्चारण की, वो चार पांच गाली बकने के बाद राहुगण ने, तो पहली बार भरत महाराज ने मुंह खोले, वो कैरियर के रूप में थे, बोले रे राजा तू अपने आप को राजा समझ रहा है नहीं, तू भी एक मिट्टी के धुंधा, ये पलकी भी मिट्टी के धुंधा, मैं भी मिट्टी के धुंधा, कौन राजा है, इसे मिट्टी की विकार है, इस मिट्टी में एक मटका बनता है, एक घड़ा बनता है, एक थाली बनता है, एक दिया बनता है, एक और कुछ बनता है, बोले सारे तो मिट्टी के ही विकार है, नाम अलग अलग होता है, रूप अलग अलग होता है, लेकिन है तत्व तो मिट्टी तो है ना, बोले हाँ ये पालकी और मैं और आप सब तत्व एक ही है, थोड़े दिन के लिए तू बन गया इस नाम बन गया रूप आ गया तू राजा बनता है अपने आप को, हमने दुनिया को सब इसी दृष्टि में देखता, बाप रे बाप ऐसे बात है कि पालकी ने कैरियर कहार ऐसी बात कह रहा है, तो राजा तो पसीना उतर के बोले ये कौन है बाबा, ये कोई कहार ऐसी बात तो नहीं कहता, तो उनको जैसे लगा बोले तो बड़ी इसी वो इसी तत्व बात कह रहा है उन्होंने, तो दूसरी बार और एक बात बोले, बोले तू जो कह रहा है कि मुझे मैं मतलब सचमुच मैं तो शरीर है ही नहीं, शरीर के मोटा क्या पतला के बल कुछ है कौन किसी को होता है, मैं शरीर है ही नहीं, बोले हरा तू बिल्कुल शरीर भी नहीं मानते अपने आपको, बोला ना बोला तू भी मूर्ख है, शरीर क्यों मानते हैं आपने, तू राजा बोलता, कौन राजा कौन प्रजा, ये सब टाइटल है, थोड़ी देर दिया हुआ इसमें कौन राजा प्रजा होता है, तो साउंड टाइटल है ना, तो हम शरीर नहीं, तो शरीर का पहचान है टाइटल, फिर और तो झूठे। इस प्रकार का दो स्टेटमेंट सुनने के बाद राजा बिल्कुल फ्यूज उड़ गया उनका, वो तुरंत पालकी रोका, उतरा ऊपर से पालकी उतरा, आ करके उनको देखा, आपाद मस्तक देख करके कोई चिन्ह वर्ण नहीं है शरीर में, कोई कौन सा वर्ण के है, कौन सा आश्रम, कुछ पता नहीं चलता पागल है वो तो हाथ जोड़ के पूछा, और आप कौन है बताए मुझे, मैं बहुत डर रहा हूं, आप ब्राह्मण तो नहीं है। बड़े सुंदर श्लोक भागवत में आता है, नाहंग विसंके सुरराज वज्रे, बोलते हैं कि मैं इंद्र के वज्र को नहीं डरता हूं, ना शिव के पशुपत अस्त्र त्रिशूल को नहीं डरता हूं, ना शूल पाणी ना चूल पाणी उनमें नहीं डरता हूं, और किसी को जम के काल पास को नहीं डरता हूं, सूर्य के तेज को अग्नि में किसी को नहीं डरता हूं, मुझे केवल डर है ब्रह्मावमानम, कोई ब्राह्मण को वैष्णव को अपमान ना हो जाए, ये सबसे कंडम है, वो पता था ना डिवोटी था, ये सबसे खतरनाक है, वो तो नहीं हो गया मेरे से, आप कौन हो, निगूढ़ लिंगम, आप ऐसे छिपे हुए घूमते हैं, आप कौन है, आप कपिल देव तो नहीं, मैं जिससे सुनने जा रहा हूं भागवत आप तो वही नहीं है, क्यों ये तत्व बात तो वही केवल कह सकते हैं, और तो कोई कह नहीं सकता, आप तो वो नहीं है, ऐसे बहुत बिल्कुल पूछना, प्लीज बताए आप हु आर यू, तब राजा तो गिड़गिड़ा करके पूछा डर के मारे रो करके, तब उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन दे, बोले तू तो देह में हो मुझे पूछ रहा हूं, बोलते हैं तूने नाम सुना, हिस्ट्री पढ़ा ना, इतिहास पढ़ाओ, नहीं इतिहास में पढ़ा होगा, एक पहले पुरा काल में एक राजा था भरत राज करके, जिसके नाम से भरत, हाँ मैं जीके में पढ़ाऊ उसका नाम, तो हिस्ट्री पढ़ाओ, इतने बड़े राजा थे, ऋषभदेव के पुत्र थे, उनके नाम से ये चक्रवर्ती सम्राट थे, वो तो महासाधु वैरागी थे ना, अहम पुरा भरत नाम राजन, मैं ही वही पुरा काल के जो हिस्ट्री में पढ़ा था भरत, मैं वही हूं, वो तो चमक कर खड़ा हो गया, बोला आप वही भरत, ना यस मैं ही भरत रहा, तू क्या, वो जो चक्रवर्ती सम्राट थे वो तो एक एरिया के राजा है, तो वो तो काम का, बोले मैं ही उनको ऑर्डर दे रहा था, आप भरत ना, मैं ही भरत महाराज, अब मेरे दशाएं में घूम रहा हूं, बाप रे बाप, उनका हाल बिदल गया बिल्कुल, ये बता करके फिर उनको बताने लगे, बोले आप फिर क्यों इसे घूम रहे, आप भरत महाराज स्वयं आपने विरक्त, ना मैं वही हूं, अभी तक अब घूम रहे ना, अभी तक मतलब मेरा ये तीन कोर्स थर्ड कोर्स चल रहा है, थ्री फेज में आ गया, बोले वो फिर अपना हिस्ट्री स्वयं बताते हैं, उसी समय अपना हिसाब किताब बताते हैं कि मेरा क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे मेरे पतन हुआ, फिर मैं हिरण बना, ऐसे शरीर छोड़ा, फिर इस शरीर में प्राप्त किया, लेकिन मेरा सब याद था, तीसरा जन्म तक याद था, मैं कहीं मुंह नहीं खोलता था, ना तो मुझे कब भय होता था, ना शोक होता था, क्योंकि मैं आसक्त नहीं था शरीर के प्रति, तिल पर भर भी मेरा आसक्ति नहीं था, ये मरे बचे मान अपमान की बात ही क्या होता है, कोई ना ठंडी ना गर्मी, कभी स्वेटर ना चादर, कुछ नहीं लेते थे, शरीर अपना को मानते नहीं थे, स्थिति में थे, इतने ब्रह्म स्थिति में पहुंचे हुए स्थिति में थे, देहात ऊपर स्थिति में थे, तो उस राहु गण सुनकर बोला मैं क्यों जाऊं कपिल देव, तो आप ही तो उनसे और बड़े लगते मुझे, तो उनसे ही ज्ञान होता, फिर बोले मैं अभी तक किसी को नहीं बोला था, अभी तक मैं जड़ अभिनय कर रहा था, बोला संजय मैं जड़ नहीं हूं, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ सबको, बाकी जितने समझदार है उनसे कई गुना समझदार मैं हूँ, जानता मेरे पिताजी मर गए मेरे सामने बोलते बोलते, मैं समझ रहा था दुर्भागा मर गए, लेकिन क्या करूं, मैं मर गए, इतने लोग मरे, ये मरे मरे, सब देख रहा था समझ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा था किसी को। अब देखिए एक व्यक्ति के सामने उनके गांव वाले मर गए, उनके पिताजी मर गए, माताजी मर गए, एक अज्ञानी लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, पूरे गांव के गांव गला कट गया मर गए, तभी वो एक शब्द उच्चारण नहीं किए, अगर वो थोड़ा बोलते सर बेचारे देवी माता ने उनको मारा नहीं होता, वो अगर बोलते कि अरे बुद्धू तुम मुझे क्या मारेंगे, देवी मुझे ग्रहण कर सकता, देवी का मालिक जो है मैं उनका आदमी हूं, मुझे देवी कैसे ले सकता, सही में देवी स्वयं प्रकट किस लिए हो गए, ये भागवत का सिद्धांत है। वो मूर्ख लोग उनको बलि चढ़ाना चाहते थे देवी के सामने, लेकिन जो भक्त है जिनको पूर्ण विश्वास है वो निर्भय रहता है, बोलता है कि देवी कैसे मुझे लेगा, देवी तो उनके दासी है, जब मैं उनका आदमी हूं उनका सा उनका ही वैसाद है मुझे ले ले, मुझे मर्डर कर देगा उनके सामने, हो ही नहीं सकता। तो देवी जैसे देखा कि बदमाश ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे प्रभु के प्रिय भरत को उन्हें मारना चाहते हैं, तो स्वयं प्रकट हो गए, प्रकट होकर सारे गांव को नाशकरी मार दी, लेकिन तब भी नहीं बोले भाई मत मारो बेचारे अज्ञानी है, कुछ नहीं बोले। अब एक राजा जा रहा था, वो थोड़ा सा गाली दिया उनको, अब इतने दिन का व्रत तोड़ करके जवान खुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्यों क्यों का जब प्रश्न उठता तो बोलते हैं कि यही है कि पात्रता जहां पे है वहीं पे देना चाहिए, आप उचित पात्र हो मेरे बात को सुनने के लिए, बाकी कोई पात्रता था नहीं, अभी तक मैं देखा नहीं गया, काहे को बोलूं, आप जिज्ञासु हो, कश्मीर के राज्य छोड़कर गंगा सागर तो दौड़ के जा रहे सुनने के लिए, मैं देखा आपके अंदर जिज्ञासा है पात्रता है, तो इसलिए मुंह खोला, तेरे जो दुर्भावना है जो दुर्बुद्धि है, मैं एक चोट दो बात बोला तो उतर के आया बाल किसी नीचे सुनने के लिए, लेकिन तेरा अंदर पात्रता था। तब उनको बताते हैं तो समझाए, तो उन्होंने बोले कि फिर मैं ये मैं मेरा कैसे कल्याण होगा, मैं स्थिति कैसे प्राप्त करूंगा, तो पूछे कैसे प्राप्त करूंगा, भरत महाराज जड़ भरत बोलते हैं कि राहु गणस तत्र तपसा न जाती, कोई तपस्या से वो प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं जड़ाग्नि सूर्य ना जल में रह करके अग्नि में रह करके सूर्य में तप करके कोई व्रत करके दान करके अध्ययन करके ये करके किसी में नहीं हो सकता, बिना महत्पात रजोभिषेकम, बिना महत्पाद इतने पहुंचे हुए भगवत जन भगवत भक्तों के चरण रेणु से जब सिक्त नहीं होगा उनका सेवा नहीं करोगा, ये स्थिति कोई साधन से नहीं प्राप्त हो सकता, किसी भी उपाय से नहीं हो सकता, बिना महत्पाद जो अभिषेक, ये शिक्षा दे करके उनको उद्धार किए, उद्धार करके उनका तो था ही तीन जन्म से, इसे कई कई महापुरुष कहते हैं कि भरत जी कहां गए, चले गए उनको तो चले गए, वो तो स्थिति में थे ही, बोलते हैं कि वो उनका उत्तरदायित्व था इसलिए वो अपेक्षा कर रहे थे, तीन बार आए उनको राहुगण को उद्धार करने के लिए, बोले क्यों, कई कई मैं सुना हूं, कई शास्त्र प्रमाण मुझे मिला नहीं लेकिन कई वक्ता से मैंने सुना हूं कि वो जो राहुगण था ना कौन था मालूम है, वो हिरन था, जिस हिरन को उनने उद्धार किए था ना वही हिरन अभी राजा बना था, वो तो बन गए हिरन, वो बन गया राजा, तो उनको उद्धार ढूंढ रहे थे ना उसको, मैं उनको उद्धार करके छोड़ूंगा, मेरे शिष्य बना मेरा उत्तरदायित्व से उद्धार करूंगा, लेकिन वो उद्धार नहीं हो रहा था, वो हिरन था इसलिए हिरन जोनि में गए, वो आदमी बना थोड़े आदमी बने, राजा बना बोले राजा तो ब्राह्मण की बात सुनेगा तो ब्राह्मण सुन में आए, उन्हें मेरा बात मानेगा, तब उनको देख करके पहचाने उनको उपदेश देने लगे, तो उनको उद्धार के फिर वो चले गए उद्धार करके। जो भी हो तो इसे भरत महाराज की जो प्रसंग है इसमें से ये देखा जाता है कि अगर हम कितने भी सतर्क रहें कितने भी वैराग्य त्याग करें लेकिन सदा सर्वदा अगर थोड़ा सा गड़बड़ी करें, जैसे जो हिरण को बचाए वहाँ पर बड़े बड़े मनीषियों ने बात किए हैं कि दया ही भक्ति पीछे बाधा हो गया, अगर वो दया ना करते तभी उनका ऐसी दशा नहीं होता, उन्हें ठीक है उद्धार किए, कई जगह में तो इसे कहते हैं कि अगर जंगल में आज भरत महाराज नहीं होते वो तो मर जाता है ना, नहीं तो इसे केस कई बार होता होगा, कई पशु इसे मर जाते होंगे इस चीज में, जीवन मृत्यु तो इसे लगा रहता है, मरते हैं, तो वो क्यों उतर के जाके बचाए बचा कर लेके भगस पता कहे किए किए क्या जरूरी था, अगर किए उठाकर लाए फिर वही छोड़ के आ जाते, कई जगह में कई आचार्य ने कई उन्होंने किसी को कंसल्ट नहीं किए इस समय में, कंसल्ट करना चाहता कि मैं क्या करूं स्टेज में, ना किसी कंसल्ट किए ऐसा सोच करके थोड़ा सा दया, इससे आसक्ति बढ़ गया और इस दशा हो गया स्थिति में। ऐसे ऐसे स्थिति में जाकर भी ऐसे पतन हो सकता है, और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कम से कम फिर इतने उच्च कोटि का महात्मा होने पर भी फिर तीन तीन जन्म लगाने के बाद, इतने कड़ी साधन भजन करने के बाद फिर जाके उधार पाएंगे। हम लोग तो ऐसे जड़ जैसा भूमिका तो कर ही नहीं सकते, जिनका इतना अनुभव हो वही केवल जड़ बन सकता है, नहीं तो जानबूझकर जड़ कौन हो सकता है। भगवान ने कभी जड़ बना देते हैं, हम मशीन मशीन लगा कर उसमें काम कराना चाहते हैं, एक्टिव बनाना चाहते, लेकिन ये फूल एक्टिव थे, जान भर कर जड़ हो जाए ऐसा कभी देख सुना आपने? ये भागवत में ये प्रसंग दिया गया कि भरत महाराज पूर्ण अभिज्ञ, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण समझदार, सारे इंद्रिय परफेक्ट काम कर रहा था, लेकिन फिर भी इस संसार से इतने अनासक्त थे कि कुछ भी काम नहीं करते, जड़ होकर बैठे थे। और जहां पर एक्शन रहना था वही एक्टिव हुए, नहीं तो पूरा जड़ थे। क्या क्या घटना उनके सामने घट गया, ऐसे ऐसे चरित्र से बनना है भगवत। किसी कोई प्रश्न है?
एक महाराज जैसे हम देखते हैं, हम जैसे भरत महाराज ने काफी पहले भी वो डिवोटी थे, तो मतलब कि सब कुछ छोड़कर वो आ गए, तो लेकिन पहले वो राज्य भी संभालते होंगे, थोड़ी देर बाद ने छोड़ दिया। वैसे हम देखते हैं कि जैसे हम इस कोल में हैं, तो हम मतलब कि जो भी प्रभुपाद ने बताया रास्ता उस पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं 30-40 साल तक हम करते तो हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई डिवोटी ऑफेंस हो जाता है, तो किसी ना किसी के प्रति अपराध हो जाता है। लेकिन जैसे हमने अब कांति प्रभु को देखा है, मैं उनको बताता हूँ प्रभु जी यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो कहते हैं आप चुप करके अपना हरिनाम लो, आपने कहने लगना भगवान बैठे हैं, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मीन्स की उनका स्टेज ऐसी क्यों होगी जड़ पड़ रखती हो। तो वैसे जैसे हमने महादेवी महाराज को देखा है कि थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी में वो फंसे, वो कहते हैं कि मैंने क्या लगा देना, उन्होंने इस कौन से अपना रेजिग्नेशन दे दिया, तो मीन्स की महाराज एंड स्टेज पे हमें आकर सब कुछ छोड़ के एक्सक्लूसिवली भजन ही करना चाहिए।
करना तो भजन चाहिए, लेकिन ऐसे भजन करने का स्थिति आपका नहीं आए, इस स्थिति में नहीं पहुंचे, आप कैसे कर पाएंगे? इस स्थिति को आना पड़ेगा ना, आपको इमिटेशन तो नहीं कर सकते। पहले इतना अनुभव हो जाए तब जाकर कर पाए। भगवान नहीं उनको फंसा है, मैं इसलिए बोला ना कि वो तो फंसना चाह रहे थे, उनको उद्धार करना चाह रहे थे, उनका एक और कोर्स ऑफ एक्शन था, वो फंस ही नहीं सकते। भरत जी का पतन को भागवत में कहीं पतन करके नहीं लिखा गया, शिक्षा तो बोल रहे।
जैसे हम हर वक्त ही मोहग्रस्त रहते हैं, हर कोई इस संसार में हमें मोह लगा रहता है, बच्चों का, बड़ों जे, पैसे का, जे हमने जे करना वो करना, एक किस्म का मोह ही है। सब कुछ सुनते हैं, सब भागवतम ही करते हैं, पर फिर भी जब अपनी फैमिली या जैसे जो बिल्कुल है, तो उनके हम मोह नहीं छोड़ता, हम सोते हैं क्या बच्चों का मोह करना या क्यों, फिर भी नहीं छोड़ पाते, ऐसा क्यों? सबको समझते भी हैं, रोज भागवतम सुनते हैं, तो फिर भी हम जे लगे रहते हैं, जे मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसे ही हर सारा हम सब लगे रहते हैं, तो इसका कैसे बचना चाहिए?
अब आपको तो पता ही है ना, जैसे कहते हैं ना कि बंदर ने वो मटका में हाथ डाला चना निकालने के लिए, और चना माठी में भरा और निकल हाथ निकल नहीं रहा है। बोला कैसे निकलेगा, बहुत हल्ला कर रहा है, कैसे निकलू कैसे निकलू, कौन निकालेगा। वो अगर मुट्ठी छोड़ दे तो हाथ निकला भाई, छोड़ना नहीं चाहता, वही छोड़ना नहीं चाहता, वो बोलता है कि मेरा हाथ नहीं निकल रहा है। छोड़ेंगे तो हम, और कौन छोड़ेगा। एक इसी भरत महाराज के प्रसंग में है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे 13 और 14 अध्याय भागवत के पंचम स्कंद का अध्याय, जिसमें भवाटवी का वर्णन है। इस संसार को एक अरण्य के साथ वर्णन किया गया, एक जंगल, घोर जंगल, और हम लोग उसमें एक पथिक है, इसको भवाटवी वर्णन, बड़े भयानक वर्णन, सांकेतिक वर्णन हुआ है। इसमें ऐसे वर्णन आता है, विशेष करके गृहस्थ लोगों के लिए कहा गया, ये मेरा वचन नहीं, भागवत में जैसा लिखा है मैं बताता हूँ। आप बोलेंगे हमको ऐसा कहते हैं। इसमें लिखा गया कि ये बात विदुर जी भी कहते थे, उनको धृतराष्ट्र कहे, बोले एक व्यक्ति चला गया बिजनेस करते करते जंगल, पहले जमाने में जंगल पारी करके जाना होता था, दूसरे देश को जाना होता था बिजनेस वाणी करने के लिए। तो जंगल में गया तो जाते जाते चीता देखा, चीता या शेर किसी को देखा, देखा तो शेर देखा उनको, उनका पीछा किया। ऐसे कई जगह कहे कि वो शिकार करना चाह रहा था, वो जो बाण मारा, वो जिसको बाण मारता उसमें अलग करके वो शेर में लगा, और शेर का कुछ हुआ नहीं, उसका पूछ में लगा, तो गुस्सा होकर दौड़ा। गलती से हमारे दौड़ा, उन्होंने पीछे पीछा किया तो आप भागे। अब आपके पीछे शेर भाग रहा है वो खाने के लिए आपका, और देखेंगे कि रास्ता में कंकड़ पड़ा है कि कांटा है, झाड़ी है, पत्थर देखेंगे उसको, अरे जान बचे, टांग पथे उड़ जाए पहले जान तो बचे सही। एक टांग भी अगर कट कर रुक जाए तब भी जाने दो उसको। अब तो बचने का प्राण भय में भाग रहा था, उन्हें बहुत तेजी से भाग रहा था, शेर उसका पीछे भाग रहा था। भागते भागते जंगल में एक सूखा गड्ढा था, कुआं था, और कुआं में घास फूस ढंका था, उसमें दौड़ के जा रहा था, धम से गिरा, उसमें गिर पड़ा, कुआं के अंदर गिरा, गिर रहा था कुएं के अंदर, और बिल्कुल डर गया था, कुएं के अंदर मरने वाला है गिर कर। लेकिन ये कुएं के पास में एक बरगद था, बरगद देखे ना आपने, जिसमें जड़ निकलता है, तो बरगद था, बरगद का जड़ ऐसे निकला हुआ था, कुआं के अंदर तक गया था, तो उसका हाथ में आ गया। ऐसे मरने का समय में जो हाथ में आ जाता ना, तो प्लास से भी और ज्यादा टाइट उसे पकड़ लेंगे आपने, इमीडिएट इतने कस करके पकड़ लिया, हाथ से पैर से बिल्कुल लिपट गया उसमें, और अंदर नहीं गया, वहीं से झूलते रहा उसे पकड़ कर आधा कुएं में, कुएं से जा चुका है अंदर मिडिल पॉइंट में, अभी कुएं के आधा में जाकर इस जड़ को पकड़ कर हिल रहा है, इसे इधर ठकरा रहा है, इधर ठुकरा रहा है, फिर इधर ठुकरा रहा है, इसे हिल रहा है। और पीछे जो शेर उसको भाग कर आ रहा था खाने के लिए, वो आकर सडन ब्रेक मारा है, तो कुआं है, वो नीचे देख रहा है, मुंह ऐसे आवाज कर रहा है देख करके, कब तो ऊपर आएगा, बैठा तुझे खाऊंगा, आओ ऊपर आओ, आएगा ना ऊपर, ऊपर तो आ नहीं सकता पकड़ करके, क्योंकि शेर मुंह फैलाकर बैठा है ऊपर में, कभी सोचेगा मैं जड़ को पकड़े ऊपर आ जाऊं तो यहां ब्रेकफास्ट बनेगा, आ नहीं सकता। तो कभी विचार करेगा कि नहीं मैं, अच्छा चलो ऊपर तो नहीं जा सकता, शेर बैठा, नीचे जाऊं, कुआं के तल नीचे से देखा, थोड़ा थोड़ा जल दिखा रहे थे कि विशाल सर्प नाग, काला नाग गर्जन कर रहा है, फुत्कार कर रहा है, बोलते मेरे घर में कौन आ गया। वो कुआं के अंदर वो रहता था, वो देखा कि ये कौन आ रहा है मेरे घर में, वो तो गर्जना कर रहा है पूरे, बिल्कुल फुत्कार, नीचे जाएगा तो ये चोट मारेगी कि वहीं मरेगा वो, और नीचे जाने की तो भय, सब देखने से कोई डर नहीं जाएगा, नीचे सर्प भय, ऊपर में व्याघ्र भय, तो नीचे भी नहीं जा सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता। अब बोला चलो, यही लटक रहा है पकड़ करके, लटक के पकड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो जो बड़गत का जो प्रसा जो शाखा था जिसमें जड़ निकला था, उस शाखा में एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, जंगली मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी लगे होते तो वो हिल रहा था, तो हिल रहा था तो मधु टपका उसमें, गिरने लगा तो मधु आकर के सीधा उनका कहाँ गिर रहा था, ऐसे नाक के ऊपर गिरता था, ऐसे जाता था, ऐसे भाग कर टप गया। प्योर हनी, कोई मिक्स नहीं, ऐसे डाबर हनी नहीं, एक बार जंगल से डायरेक्ट मधु के छत्ता से टपक रहे गिर रहा था उनके ऊपर, जब गिर रहा था तो दौड़े दौड़े थक गया था, तो इसे जीव निकाल करके ऐसे करके यहाँ पर लेकर थोड़ा सा लगता था चाट रहा था इधर इधर से, मतलब ओ सो नाइस, कितने अच्छा है, सो हैप्पी, है ना, कितने सुख है इसमें, क्या टेस्ट है हनी का, है ना, हम लोग का दशा सब ऐसा ही है। हम इसी दशा में रह करके थोड़ा सा हनी कहीं टपक रहा है, जी वहां बड़े मुश्किल से लग रहा है, वहां पे थोड़ा सा लग गया, बोलते सो नाइस, दिस लाइफ इज सो नाइस, सो हैप्पी। इसी प्रकार और उसमें भी दिखाते हैं, वो जो मधुमक्खी है ना, वो आकर के डसते हैं, बोले कौन डिस्टर्ब कर रहा था, हमारा छत्ता क्यों हिल रहा है, पता लगे सारे मक्खी भड़बड़ करके बाहर निकले, निकले आकर देख रहे हैं कि यही व्यक्ति हिला रहा है, और वो तो हाथ नहीं भगा सकता उनको, हाथ और पैर दोनों टाइट पकड़ा हुआ है, तो आकर के नीचे से ऊपर तक सर जाकर इंजेक्शन ठोकने लगे उनको। मधुमक्खी का कभी लगा आपके इंजेक्शन, टेस्ट किया आपने? नहीं, नो एक्सपीरियंस किए, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, तो एक बार दो बार कभी लिए होंगे, तो पूरा शरीर में जंगली मधुमक्खी अगर अपना इंजेक्शन दें चढ़ाए तो क्या करे, हाथ भी छोड़ नहीं सकते, इधर भी नहीं कर सकते, भगा भी नहीं सकते उनको, तो कैसा लगता होगा, सारे शरीर में मधुमक्खी डंस रहे हैं, नीचे सर्प की गर्जन, ऊपर बाघर की गर्जन, और प्राण भय में ऐसे हिल रहा है, और वो भी नहीं, वो जो शाखा हिल रहा है ना उसमें दो चूहा बैठ कर उसको काट रहे हैं, अब कब काटने तो गिरेगा ही नीचे, टूट जाएगा वो, तो इसी स्थिति में रहकर भी अपने जिह्वा निकाल करके इस मधु जो टपक रहा है उसको चाट करके वो बोलता है सो हैप्पी। जब विदुर ने धृतराष्ट्र की बात कहा, धृतराष्ट्र बोला विदुर कौन ऐसे महामूर्ख होगा, इसी अवस्था में कैसे सुखी हो सकता हो, असंभव है, ऐसी अवस्था में कैसे कोई सुखी हो सकता, ऐसा मूर्ख कौन होगा। विदुर बोला ताऊ जी और कोई नहीं तो आप ही है, आप ही ऐसे सुखी है, आपके पूरा सेंचुरी ऑल आउट हो गए, शोक शो पुत्र मर गए ना, राज्य गया, पुत्र गए, मान गया, पोस्ट गया, पोजिशन गया, सम्मान गया, एवरीथिंग गया, फिर भी तुमने जिसी को मारने के लिए कुत्ते की तरह देख रहा था, मारने के लिए जिंदगी भर प्रयास करता था, उन्हीं के घर में उनके टुकड़ा खाने के लिए पड़े हो ना कुत्ते की तरह, वो बोलता है कि आई एम हैप्पी। क्या करूं फिर, गेट आउट, चलो अब भी रात को निकल जाओ जंगल में, देखो वहां मरो, नीतिवान धर्मज्ञ विदुर उन्होंने ये उपदेश दिए थे, उनका कोई कमी थोड़ी था, उनका मेंटेनेंस स्किल कमी था, धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो तो जो मांगते पांच मांगने से 500 देते थे, कितने खातिर कितने सम्मान करते थे अपने पितृव्य मान करके, लेकिन विदुर आकर निकाल दिया ना, इसी प्रकार ठीक ठाक रहेगा तो आपका दुर्गति हो जाएगा, तो मेरा भाई मैं उसे कम से कम बचाना बड़ा करते हुए डाउट।
एक बार जैसे हम देखते हैं कि भरत महाराज वो हिरण के कारण उनका मतलब कि ध्यान उसमें भट गया, तो हम भी देखते हैं हमारी लाइफ में भी कई डिवोटीज आते हैं, तो हम उनके साथ थोड़ी चर्चा करते हैं कृष्ण की, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी कारणवश इस्कॉन छोड़ के चल जाते हैं या भक्ति से हट जाते हैं, तो हमें भी मतलब उनसे अटैचमेंट हो जाती है कि ये भक्ति क्यों नहीं कर रहे, मतलब हम उनको मोटिवेट करते हैं लेकिन वो माया में बड़ी बुरी तरह फंस जाते हैं, तो इसकी हमारा भी हालत है, भरत महाराज जैसे ही है, जैसे वो हिरण के नहीं उनके साथ था तो वो अच्छा फील नहीं करते थे कि चलो आज ये नहीं आया भक्ति का, तो हमें इसकी छोड़ देना चाहिए उनको,
बिल्कुल क्या समझता है आसक्ति केवल हरि में होना चाहिए और किसी में नहीं। जो हरिजन है, जो वास्तविक भगवान भक्त है उनमें भी होना चाहिए, लेकिन आप बोलते हैं कि थोड़ी देर में कोई निकल गया वो फिर भक्त किसा है, भक्त तो वो है जो किसी भी परिस्थिति में भगवान को छोड़ नहीं सकता, हो जन्म होता है। भगवान ऐसे कच्चे लोगों को अपना नहीं मानते। मैं कल बताया था ना, हम एक मूली खरीदने के लिए कितने आगे पीछे चेक चाक करते हैं, तो भगवान अपना आदमी को इसे बिना चेक कर ले जाए क्या? हम जैसे ऑर्डिनरी को बहुत ठोक पीट करके चेक करके ऊपर नीचे देख करके लेंगे, अपना बनाएंगे। जिसको अपना बनाएंगे फिर तो बनाएंगे, फिर वो कभी नहीं किसी की मर्जी की परिस्थिति से हटेगा नहीं। अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं कर सकता। थोड़े से परेशान आया, हट के निकल गए, मैं ये छोड़ दिया, मेरे जी ने सिंह दे दिया, मैं ये करूंगा वो करे, आर दे डिवोटी। क्यों डिवोटी? क्यों इस परिस्थिति में आपको विकार क्यों हुआ? आपको इंडिफरेंस रहना चाहिए। भरत महाराज का चरित्र तो वही देखते हैं कि उनको कितने गाली क्या क्या पड़ा। वो थोड़ी बोले कि नहीं मेरे सुन देता हूँ झड़ा करूँ यहाँ से हट जाऊँ ना, तुम उनको फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं तुम अज्ञानी बहु के दोष होता है क्या हमारा, मेरे तो शरीर है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा।
एक बार जैसे हम देखते हैं कि दीक्षा गुरु होते हैं, उनके मतलब शिष्य होते हैं काफी, तो उनकी अपने शिष्यों से कई बार पर्टिकुलर शिष्य से कभी अटैचमेंट होती है। जैसे आपने कथा में बताया कि ना किसी से राग ना किसी से द्वेष होना चाहिए, तो कई बार क्या होता है जैसे आपने बताया मरने के समय होना चाहिए कि हम अकेले हैं ताकि भगवान को याद कर सकें, तो कई बार ये भी हो सकता है कि उनका डिपार्चर हो रहा है तो काफी शिष्य आए थे उनकी पर्टिकुलर किसी के प्रति उनको पुकारते हेल्प के लिए, क्योंकि सारी जीवन में उन पर डिपेंडेंट होते थोड़ा सा।
तो ये केस अलग होता है, ये जो वो अगर विरक्त महापुरुष लोग रहते हैं और रहते हैं इसे विरक्त लोगों के बीच में, और वो लोग भगवान के कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा गाएंगे, वो स्थिति अलग है ना, वो माहौल अलग है।
जैसे किसी का प्रभु जी एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी तो स्मृति कहीं भी नहीं होती
ना, वो तो भूल
बनना चांस कभी दो इतने होते हैं,
तो हम कहते हैं ना जैसे अंतकाल
समय, वो तो अकाल माना जाता है उसको। हाँ, तो फिर उनकी क्या होती है?
वो भूत प्रेत बनेंगे उनका,
मतलब जो सारे
वो, क्योंकि वो भावना कुछ कर नहीं पाए ना।
हाँ,
तो कुछ शरीर मिलेगा नहीं, अशरीरी हो जाएंगे, कुछ दिन पज रह जाएगा उनको, पज बटन होता ना, इस दिन पज में रह जाएंगे फिर आकर के उसको बटन दबाएंगे फिर आ जाएंगे एक्शन में। जो पता नहीं रहेगा, न्यूट्रल में रहेंगे तो फिर वही अशरीरी हो जाएंगे, शरीर नहीं मिल पाएगा उनको। लेकिन ये शरीर नहीं मिल पाना और ज्यादा कष्ट है, वो बहुत कष्ट हो में, क्योंकि उसमें क्या होगा कि शरीर तो नहीं मिलेगा लेकिन इच्छा तो रहेगा। आप सुबह उठकर चाय पीना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, चाय आपके सामने रखा भी हुआ होगा लेकिन मुंह नहीं पियेंगे किसे पीने का इच्छा है, चाय भी है, वो आपका जीवा नहीं कि मुंह नहीं है, वो कितना कष्ट आप तभी अनुभव कर पाए, इतनी भारी यंत्रणा, अरे कैसे पीऊं, प्यास लग रहा है, पानी भी है लेकिन पी नहीं सकता ऐसी स्थिति है वो। फिर किसी के शरीर में सवार होकर के अपना काम करते हैं।
एक महाराज हम जैसे देखते हैं भरत महाराज की स्टोरी में, वो अपना इतना बड़े उनका सारे भारतवर्ष के वो राजा होते हैं, सब कुछ छोड़ के चल जाते हैं। वैसे हम देखते हैं रघुनाथदास गोस्वामी है, उनका भी काफी राज्य होता है, जमींदार होते हैं, वो छोड़ के चल जाते हैं। वैसे सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी होते हैं, उनकी भी डेजिग्नेशन होती है, सब कुछ छोड़ के चल जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन जैसे आप सुबह बता रहे थे कि हमें तो मतलब की वैराग्य जीना चाहिए, जैसे हमारे पास अगर कोई सुविधा है तो धन को भगवान की सेवा में लगाए या प्रचार कार्य में लगाए, तो मीन्स की इसमें कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक डिवोटी को क्या स्टेप लेना चाहिए, या तो सब कुछ छोड़ के चल जाए और भगवान की भक्ति करे?
छोड़ना तो पड़ेगा ही, आप नहीं छोड़ेंगे अब छुड़ा दिया जाएगा है ना, कितने दिन से पकड़ के रखेंगे आपने, छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं छोड़ते हैं जो भगवान की सेवा में लगाएंगे, अगर आपका मान कर लगाएंगे वो भी गलती है, ये आपका नहीं ये भगवान का है, उनके समय इस भाव में लगाएंगे दैट्स ओके, ये युक्त वैराग्य है। लेकिन हम कभी सेवा में लगाना चाहते हैं बोलते मेरा है मेरा नाम लिखो, तो और गड़बड़ी ये है। एक को डोनर होते ना, एक डोनर था, मैं सुना होगा तो सर, वो आया गर्मी से, बोला अच्छा प्रसाद हम लोग फैन नहीं क्या, चलो मैं चार फैन देता हूँ, तो फैन दे दिया, उषा फैन डोनेशन दिया उन्होंने, तो बोला मेरा नाम, हाँ नाम लिखवा देंगे, तो हर पत्ता पर उनका नाम, उनके पत्नी का नाम, पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर सब लिखा रहा, तीन पत्ता होता ना, तीन तीन पत्ता में सब में पूरा डिटेल्स लिखा गया। तो एक महीने के बाद गर्मी के समय वो आया था उसने, तो उनके जो आपने दे थे आप उसी प्रसाद हाल में, आप चलिए प्रसाद पाइए, फैन लगाया उसमें अभी जैकबोर्ड प्रसाद ले रहा था, प्रसाद ले रहा था, बहुत गुस्सा हो रहा था भाई, वो तो समझ नहीं पा रहे थे कितना गुस्सा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा खासा ट्रीटमेंट किए, अच्छा प्रसाद दे रहे गुस्सा को, तो उनको पूछे क्या पूछ रहे, बंद करो फैन, प्रसाद दे रहे, मैं गर्मी लेना, गर्मी है तो कौन पढ़ेगा मेरा नाम लिखा, फैन चलता रहे कोई पढ़ पाता है, ना गर्मी ले रहा, गर्मी लग रहा क्या, मैं फैन दिया नाम मेरे लिखे कोई पढ़ नहीं सकता, फैन घुमा घूमता रहता है, मैं खुद नहीं देख पा रहा, बंद करो उसको पहले, मुझे शांति नहीं, खा नहीं, खाना खा नहीं सकता मैंने, फैन बंद कर दिए, पसीना पसीना देखा ना तो बोला ठीक से चला शांत हो। तो ऐसे अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या परिणाम होगा। समझ रहे ना, तो हमेशा डिटैचमेंट रहना चाहिए, हमारा नहीं ये ईश्वर का है, उनका है, उनके सामने लगा तो हमारे क्या पड़ी, ईश्वर मैं कौन हूं लगाने वाला, उनका है उनमें लगेगा, वो हम आए।
लेकिन
रघुनाथ गोस्वामी जब छोड़े वो मालिक नहीं थे, मालिक कौन था, पिता ताऊ थे ना, और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जो छोड़े उनका जो संपत्ति था बिल्कुल डिवाइड करके बना के आए, उन्होंने समाज को शिक्षा दी, आप सुने ना नहीं, वो क्या किया अपने धन को, एक नौका भर के गोल्डन कॉइन था उनका, एक नौका मतलब 10-50 ट्रक लोड स्वर्ण मुद्रा, उसको उन्होंने कैसे बंटवारा किए, यही तो आदर्श है, इस प्रकार करना चाहिए, कुछ परिवार के लिए देना, कुछ दान में देना, कुछ इमरजेंसी के लिए रखना, ये दिखाया कि इतने परसेंटेज किस किस प्रकार करना चाहिए, इस आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन।
साधन महाराज वो खुद तो नहीं गए थे,
रूप गोस्वामी खुद गए थे, सनातन गोस्वामी नहीं गए, तो प्राइम मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी, उनके छोटे भाई दोनों गए थे,
महाप्रभु ने बोला था कि आप जाइए और वहाँ पे वृंदावन में जाके,
नहीं महाप्रभु तो केवल एक ही लेटर देते, महाप्रभु बोले कि कुछ नहीं बोले थे उनको, बोले आपका काम बन जाएगा चिंता मत करो, तो उन्होंने खबर ले रहे थे कि महाप्रभु क्या कर रहे, पता चला कि वृंदावन चले तो जल्दी से वृंदावन जाना चाह रहे थे उन्होंने, तो उन्होंने चले गए, लेकिन तब तक तो वृंदावन जी महाप्रभु वापस आ रहे थे, रास्ता में भेंट हुआ था। रूप गोस्वामी ने जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो तो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जिस संपत्ति आपके पास में है उसको इसी प्रकार वितरित डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। हाँ जी,
भक्ति के लिए प्रार्थना कैसे करनी चाहिए,
भक्ति तो प्रार्थना है अपने आप ही, जो हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवान के सामने जा करके उनको पुष्प पुष्पांजलि देते हैं, प्रणाम करते हैं, ये सब तो प्रार्थना ही है,
कि हम चाहते हमारी भक्ति बढ़े, हमारी भक्ति में कोई विघ्न ना आए, तो ऐसे हम कैसे हम
भक्ति का अर्थ आप क्या समझते हैं,
भगवान की
भक्ति बढ़े, मेरी भक्ति क्या बढ़े, मेरा वजन बढ़ जाए, लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए, भक्ति है क्या चीज, समझ में आता है क्या चीज है, क्या चीज बढ़ेगा आपका, भक्ति कैसा चीज होता है, कोई मैटर है कि लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है,
जैसे हम कई बार विघ्न आ जाता हमारी भक्ति में, कई बार जैसे
अब मैं आप पहले विघ्न विघ्न पर बताओ है क्या चीज, हो किस में विघ्न आता है,
जैसे मंगलारती जाना,
हाँ तो मंगलारती जाना को भक्ति मानते हैं, वही भक्ति है, भक्ति है क्या चीज में बताओ पहले, किस में विघ्न आता है, जप करना भक्ति है, अगर जप करना को भक्ति मानते हैं, कई ऐसे भक्त देखते हैं तो जप ही नहीं करते, तो क्या भक्त नहीं है क्या, ये सब भक्ति की विधि है, जप करना, मंगला आरती जाना, भगवान को प्रणाम करना और करना, लेकिन भक्ति असल है भगवान की सेवा, हर प्रकार सेवा करना। आपके सामने अभी भगवान ने प्यास लग रहा है, कोई सुबह से उसको जल भी नहीं दिया, भगवान को एक अर्पण नहीं किया, एक गिलास पानी नहीं चढ़ाएंगे, बोले नहीं मैं तो भजन करूंगा, ये जल देने विघ्न आता है मेरे से, अरे बोलते हैं पानी देने के लिए जाकर। मंदिर कचड़ा होकर पड़ा है, कई लोग आते हैं, थोड़ा साफ कर दो, मैं नहीं साफ करूंगा, मुझे तो भजन करना है, ये नहीं है। हम भगवान ने हमको शरीर दिए, काम करने का बुद्धि दिए, ताकत दिए, हाथ पैर दिए, ये सारे हाथ पैर मन बुद्धि सब उनके सेवा में लगाना, यही है भक्ति। भक्ति माने सेवा, भगवान की सेवा करना, और किसी के लिए हमारे सेवा नहीं, और किसी का सेवा नहीं, भगवान की सेवा में लगाने के लिए लगाना ही वही भक्ति। दूसरी सेवा नहीं है तो उनका नाम जप करो, वो भक्ति है। उनका नाम कीर्तन करो, दूसरे को प्रचार करो, वो भक्ति है। शरीर के द्वारा कर सकते हैं, मन के द्वारा कर सकते हैं, वाणी के द्वारा कर सकते हैं, हमारे पास तीन ही है, काय मन और वाक्य। तीन को अलग अलग रूप से, वाणी से उनके बारे में कहो, मन से उनके बारे में सोचो और शरीर से उनके काम करो, ये है भक्ति। तो इसको आप तो जैसे भी बढ़ा सकते हो, फिर बढ़ेगा क्या, करो उनका सेवा, बढ़ाओ अपने आप, भगवान क्या बढ़ाएंगे, भगवान तो खुल कर दिए, पूरा दुनिया पड़ा है सेवा के लिए, करो। भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अभी समय है, दो चार गीता लेकर जाए, देख दूसरे को प्रचार करके गीता बेच कर आए, तब पता चलेगा भक्ति। हमारे पास तो वैरायटी सब लाखों उपाय है भगवान की सेवा करने के लिए, अगर हम करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अगर हमारा शक्ति हो, सामर्थ्य हो, समय हो तो कर सकते हैं। ओके, हरे नाम एव केवलम कहा गया कि हमारा दूसरे जो युग धर्म है, वो युग धर्म करने के लिए हमारे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है, इसी समय में युग धर्म है हरिनाम। वह हरिनाम के लिए कोई नियम का तो नहीं रखा है ना, इस हरिनाम काम करते समय ले सकते हैं, कभी ले सकते हैं, लेकिन इसी थोड़ी कहा कि सेवा ना करो करके, इसे नहीं कहा गया ना, सेवा ही करना चाहिए। आपको बताऊं एक उदाहरण, आप जानते होंगे हरिदास ठाकुर को, जानते हैं ना, हरिदास ठाकुर कौन थे, वो नाम के आचार्य थे ना, और वो जितना जप करते थे, अभी तक कोई जप कर सकता है इतना, उनके इतना क्वालिटी और क्वांटिटी समझ के अनुरूप नहीं ना, कितने करते थे वो, 192 राउंड्स करते थे ना नहीं पर डे, अगर हम कभी करना चाहेंगे कितना टाइम लगेगा हमको,
22 घंटे
हो जाए, 16 राउंड को कितने में लगता है,
1 घंटा 45 मिनट में हो जाते हैं।
अच्छा रियली, सही में आपका इतना होता है, 1 घंटा 45 मिनट,
मैं संडे को किया था, इस संडे को, तो मैं सोचा कि जैसे एक दो बार आकर प्रभु से बात हुई तो कहते हैं कि विद्यापुरम प्रभु कहते हैं कि उसकी क्वालिटी बढ़ाओ पहले जप की, तो इतवार को संडे को उठ गए, तो मैं 5:30 बजे लगा था, तो उस दिन मेरे को 3 घंटे 10 मिनट लगे 16 राउंड करने में।
नहीं वो तो फिर ढीला है, नहीं वास्तविक आप अगर सही से जप करो, कोई भी राउंड ठीक से कर को, तो मिनिमम 7-8 मिनट्स होना चाहिए, अगर ज्यादा हुआ तो लेट, कम हुआ तो कम, इस किया हमने कुछ माला हमने
ऐसे,
हाँ एक बार एक के बाद 4 के 14 में पहुंचे, ऐसा कुछ किया होंगे, नहीं तो हो ही नहीं सकता ना। तो अगर 2 घंटा भी मान लिया 16 राउंड को, तो 192 कितना घंटा होना चाहिए, 64 को कितना होना चाहिए, 4 गुना 8 घंटा
24
होना चाहिए ना, वही तो बता रहा हूँ, 24 घंटा चाहिए, तो फिर आप खाएंगे पिएंगे सोएंगे टॉयलेट बाथरूम जाएंगे, इधर से होना चाहिए ना, नहीं कैसे करते थे उन्होंने, जो भी हो जब इतने राउंड नित्य प्रति करने के बाद उनका नियम था, तब अन्न जल स्पर्श करते थे, ऐसे नाम निष्ठ भक्त को चैतन्य महाप्रभु ने बोले सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास आमर आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश गो फॉर प्रीचिंग। प्रभु जी मेरा टाइम ही नहीं है, फॉरगेट दिस, गो फॉर प्रीचिंग। घरे घरे गया, भज कृष्ण लय कृष्ण कर कृष्ण सिखाए, अड़ दिया ना, नहीं सुना ना नहीं आपने, फिर वट इज इंपोर्टेंट। अगर वो बैठ कर जप करना मानते महाप्रभु तो प्रसन्न होते, हमसे प्रसन्न तो थे, लेकिन फिर क्यों, लेकिन वो बोलते हैं मेरे पास टाइम टाइम का है, नो एक्सक्यूज, समझे। यस, लेकिन ये भी इंपोर्टेंट नहीं करके मना नहीं कर सकते। आपको और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके पांच लड़के हैं, आपके पिता के पांच पुत्र हैं, तो एक दिन आपका घर में कुछ अकेजन है, कोई फेस्टिविटी है, तो आप लड़के ए बेटो ऐसा करो खेलने जा रहे हैं जाओ, लेकिन ठीक 12 बजे आ जाना, 2 बजे आ जाना, हम प्रसाद फिस्ट है, सब साथ में प्रसाद लेंगे। हाँ पापा जी सब आ जाएंगे। सो गए खेलने के लिए, खेलने में लग गए, भूल गए। एक लड़का था बड़ा होशियार, देखा बोला पिताजी दो बोले बोले थे, याद आया, चुप से निकल करके आ गया, बोला आई विल बी दी, मुझे पिताजी का प्यार मिलेगा, मैं टाइम पर आ गया। वो बिल्कुल 2 बजे किसी को नहीं बोला, चुपचाप निकल कर आ गया। 2 बजे बोला पिताजी मैं आ गया, बाकी सब खेलने में आ गया। दूसरा लड़का के याद आया, अरे पिताजी बोले तो 10 मिनट लेट हो गया, चलो 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 सबको लेकर के साथ में आया, चलो सब बोले थे, चलो चलो छोड़ो सब सबको लेकर साथ में। अब पिताजी किसके ऊपर ज्यादा प्रसन्न होगा बताइए आपने, जो स्वयं आ गया उसके ऊपर, ना जो चारों को लेकर आया उनके ऊपर, है ना, नहीं तो आप बताए कौन सा अच्छा है, प्रचार करना अच्छा है ना स्वयं बैठ कर जब करना अच्छा है, बताइए। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना, नहीं ऐसा समझे।
वैसे महाराज जैसे हम आजकल देखते हैं कि जो लोग हैं काफी डिग्रेडेड हो गए हैं, तो जैसे आपने बताया कि भरत महाराज ने, जड़ भरत ने किसी को पहले बोले नहीं, वो प्रचार ने किसी को किया, जब उन्होंने पात्रता देखी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पात्रता किसी में है नहीं है।
नहीं ऐसा आप कह करके बचने से चलेगा नहीं, पात्रता किसके पास है वो ढूंढना पड़ेगा, यही है प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी है उसको बोलते रहो ना, प्रचार में भी यही कहा गया है कि आप प्रचार उनको करो जो प्रचार करने के लायक हो, उनको ढूंढो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रचारक नहीं पहुंचते, वो बेचारे भटक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भटक जाने का दोष आपको लगेगा, क्यों आपने नहीं किया उनको, वो आपका बात जरूर सदा से सुनते हैं, लेकिन आप उनके पास नहीं गए, दूसरे के पास टाइम खराब किए। नहीं, प्रीचर का एकमात्र कर्तव्य होता है टू फाइंड आउट हु आर फेथफुल, इतना ही। जो अनफेथ है उनके पास नो टाइम वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा।
जैसे हमारा जैसे कई जैसे हम ही हो गए, हमें भगवान मौका देते हैं कि संतों के हमें दर्शन होते हैं, उनका सुनने का अवसर मिलता है, इसका मीन्स कि हमें जो रिलेटिव्स वगैरह हो गए, जो हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमें कोशिश करनी चाहिए उनको भगतना नहीं की।
हाँ, अगर आप प्रयास किए, अगर नहीं इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो उनको पीछे ज्यादा मत पड़िए, जितने समय उनके पीछे करते हैं, अगर दूसरे कोई श्रद्धालु को तो बहुत आगे बढ़ जाता है ना। समझ ओके। आप लोग को कम से कम 2 घंटा से ज्यादा ऐसे टाइम खराब किए यहाँ बैठ करके, तो इसलिए आप लोगों से धन्यवाद है। इन्होंने हम दिए कि आप सुने बैठ करके, हम तो वाचाल है बोलते रहते हैं। ओके, जो आप चाहते हैं
दिल नहीं तोड़ना।
ग्रुप कीर्तन करेंगे ना, बदल होते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ तो बगल के